अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स. मैं हूं आपकी होस्ट सरोश. आज के एपिसोड में वी आर जॉइंड बाय सना सईद. वी हैव एन आर्टिस्ट इन द स्टूडियो विद अस टुडे, सो दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ द आर्टिस्ट हु यूज आर्ट एज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स थ्रू देयर क्राफ्ट. एंड सना सईद के बारे में बताऊंगी. शी इज़ एन आर्टिस्ट बेस्ड इन लाहौर. बिसाइज मेजरिंग इन पेंटिंग, शी हैज़ ऑल्सो लर्न फिल्म मेकिंग. उन्होंने NCA से ग्रेजुएट किया है इन विजुअल आर्ट्स. उनके फाइनल थीसिस डिस्प्ले को ऑफर किया गया था द प्रेस्टिजियस प्रिंसिपल ऑनर्स एक्सेलेंस अवार्ड. और उन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री के लिए रीविजिट किया 1947 की पार्टीशन को थ्रू विजुअल आर्टिस्ट. एंड राइट नाउ शी इज़ टीचिंग एट NCA एज अ विजिटिंग फैकल्टी इन द टेक्सटाइल डिपार्टमेंट. सो let's officially welcome her. Thank you, Sana, for joining us.
Thank you for having me.
It's very refreshing to have an artist here today. So I really hope ki hum koi bahut hi interesting baatein karenge, definitely.
I hope so.
Yes. थोड़ा सा आपके बारे में बात करते हैं, मैं जानना चाहूँगी. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग कि आपका इंटरेस्ट कैसे इमर्ज हुआ यूजिंग आर्ट एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. क्या आप नेचुरली खुद ही इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स इट, और वाज देयर आर्टिस्ट इन योर फैमिली ग्रोइंग अप दैट यू लुक्ड अप टू?
आई हैड नो आर्टिस्ट इन माय फैमिली. अब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है, अच्छा एक मज़े के बारे में बताती हूँ. मुझे लगता है कि तमाम के तमाम सोचने वाले क्रिएटिव लोग थोड़े डिलूजनल होते हैं और उन्हें कभी कभी भूल जाता है कि मेमोरी अपनी बनाई हुई कौन सी है और एक्चुअल लिव्ड मेमोरी कौन सी है. सो व्हेन आई थिंक अबाउट माय चाइल्डहुड ना, मुझे लगता है मैं दोनों को मिक्स करके बता देती हूँ. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं कहती हूँ अम्मी बचपन में ये हुआ था, दिस नेवर हैपेंड, दिस इज़ इन योर हेड. सो इन माई हेड माई चाइल्डहुड वॉज अ बिट प्रॉब्लमैटिक. आई हैड issues with body shaming. I had issues with you know, me being the first born daughter. Or my family was lovely, my father and mother were lovely, but the extended family was a bit poking.
intense
thodi si. Aur mujhe bas itna pata hai ki the only subject which interested me at that time was drawing and painting, because usme mujhe constantly, I didn't have to prove myself कि मुझे ये आता है, मुझे ये परफेक्ट आपको करके दिखाना है, 2+2=4 वाला करके दिखाना है. तो आई थिंक फ्रॉम वेरी अर्ली एज आई वॉज एक्सपोज टू दिस क्वीट कुशन कॉर्नर ऑफ आर्ट. और मुझे हमेशा से पता था कि मैंने इसी फील्ड में जाना है. आई वॉज नेवर कन्फ्यूज्ड, मैंने कभी इसको सेकेंड गेस नहीं किया. वो होते हैं ना बच्चे काउंसलर्स के पास जाते हैं और उनको पता नहीं होता कि मैं आगे आर्की में जाऊँ किधर जाऊँ. आई न्यू दैट आई वॉन्टेड टू पेंट from very early. I knew that I wanted to go to NCA even.
Acha.
Haan, mujhe bachpan se is institute ka pata tha. My mother would take me to Lahore Museum. Aur mujhe kehti thi yahan tumhari painting ek dafa lagi hogi. Aur main bada romantic sa sari reality se dur rehke apna bachpan guzara hai. Aur dusra, I am very bad with taking critique. तो मुझे जब भी कुछ बचपन में कोई भी कुछ कहता था, अभी भी कोई कुछ कहता है, तो मैं अपने आप को स्टूडियो में बंद कर लेती. अभी मैंने बोला ना कि ईद भी आती है तो मैं अपने आप को स्टूडियो में बंद कर
जी जी जी.
तो हर इमोशन को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको प्रॉपरली टू गो थ्रू इट ना, आई हैव टू केज माई सेल्फ फॉर अ वाइल.
आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई लर्नड इन द मोस्ट डिफिकल्ट मैनर. आई नो समवन हु डज द एग्जैक्ट सेम थिंग एंड I do the complete opposite. मेरा ये होता है कि when I'm going through some, I need to talk it out. If it's with a person, अगर associated directly है तो मुझे उनसे बात करनी, उसी वक्त बात करो, मैंने सोना नहीं है जब तक बात होगी नहीं, clear नहीं होगी. The other person is like, I need space. अब मुझे, और ये मुझे अकेले में करना है. और ये मैं जब मैं अकेले में कर लूँगी या कर लूँगा, उसके बाद मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी होगी एंड आई विल बी, इतना मैं काम डाउन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कि मैं अब आपसे आगे बात कर सकूँ. ये नहीं है कि वो क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे या बिल्कुल अपने इमोशंस शट डाउन कर लेंगे. दैट्स जस्ट अ नेचुरल वे ऑफ देम प्रोसेसिंग इट. मैं कहती ये क्या बात है, गायब हो जाते हैं. लाइक यू आर सपोज टू टॉक टू मी, लाइक मुझे, आई मेड इट अबाउट माई सेल्फ. डू यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग? ये चीज़ हमें बहुत रियलाइज करनी कि यू कांट मेक इट अबाउट योर सेल्फ. फिर मुझे समझ आई नहीं, ये स्पेस चाहिए होती. दिस इज अ होल कॉन्सेप्ट जो लोगों को पढ़ने की जरूरत है. एंड आई वाज लाइक ठीक है. तो आपने जब बात बोली, दैट्स व्हाई आई वाज स्माइलिंग, बिकॉज मुझे समझ आ गई है, फाइनली आ गई है कि ये एक डेफिनेटली एक चीज़ है जो बहुत लोगों में कॉमन है. एंड अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को पता नहीं होता इस बारे में, जिसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते हैं फ्रेंडशिप्स में, रिलेशनशिप्स में. सो You also talked about body shaming up. Abhi bhi, quite recently bhi, you have talked about it, Eid pe and everything jo bhi. To aap overall bhi, abhi bhi you are vocal about it. And it's also something that I talked about and I'm still talking about it. I'm very vocal about it.
Mm-hmm.
But mujhe ek cheez ye bhi lagti hai ki jab aap digital platforms pe baat karte ho, wahan pe ek bahut different kism ki audience hoti hai. You're already going through it and are aware of it.
Mm-hmm.
It's the people who are not available on that platform jinko janne ki zarurat hai, उन तक बात नहीं पहुंचती. ये बैरियर मैं ओवरकम नहीं कर पा रही. डू यू फील दैट वे टू?
आई डू फील दिस. आई रिमेंबर कॉलिंग आउट समवन, मतलब मुंह पे सबके सामने कि बॉडी शेमिंग अच्छी बात नहीं है. एंड दैट पर्सन वाज जस्ट, ही डिडंट इवन लिसन बिकॉज आई थिंक द टर्म बॉडी शेमिंग उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती. हमारा ये भी तो एक जनरेशनल गैप इस तरह भी तो करते हैं ना. अब उनको उनके अल्फाज में कैसे समझाऊं मैं?
yes.
कि आप हो सकते अब वो शायद आउट ऑफ कंसर्न भी कह रहे होते हैं.
बिल्कुल.
या टू देम इट्स अ नॉर्मल थिंग टू से, सच अ नॉर्मल थिंग टू से विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपने किसी के दिन रात बर्बाद कर दिया.
बट कंसर्न कैसे हो सकता है आपको? मतलब मुझे होता है कि आपको लगता है कि मुझे नहीं पता.
हाँ, उन्हें लगता है. आई थिंक उन्हें लगता है. नॉट डिफेंडिंग देम.
या 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 आई नो, आई
हेट सच पीपल.
आई नो, आई एम जस्ट क्यूरियस.
बट मैं भी यही ना, मैं भी उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर रही होती हूँ कि ये कहाँ से ये बात निकलती है. शायद उनके साथ हुआ है और दे कांट ब्लॉक दिस ट्रॉमा एनी मोर बिकॉज इट्स डिफिकल्ट टू डू, है ना. आपके साथ जो चीज हुई है, आपकी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है टू take revenge.
Also it irks people when you can do it and they still haven't reached it. Unko bas ye hota hai ki agar ye kar sakte hum se kyun nahi aate, it comes out in very ugly ways.
Yeah.
Ke you start poking the other person and pulling their strings the wrong way.
And with women, it is so common.
Vulnerable group samjha jata hai.
Ke hum log, mera phir kabhi kabhi dil karta hai ki main phir bahut cheekh ke batana shuru kar dun ki maybe you know I have my periods. Maybe I'm going through a phase.
Yes.
You know, our bodies go through so many things. You don't even know.
Yes.
Or even if you know, kabhi consider bhi nahi kiya isko.
Yes.
Baith ke. Aap bas baith ke ek remark de rahe ho. पता नहीं यार, ये तो ना एक और ही, मुझे लगता है इस पे तो एक बकायदा
पूरा का पूरा एक
सेशन होना चाहिए.
I think
और
yes.
उसमें आपको बुलाना भी चाहिए उन लोगों को जो लोग इसको डिफेंड भी करते हैं, बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल जो इसको डिफेंड करते हैं.
एक्चुअली थॉट ऑफ समवन तो मैं कंसीडर करती हूं. थैंक यू फॉर दैट. मैं आपकी फाइनल थीसिस डिस्प्ले के बारे में बात करना चाहूँगी बिकॉज यू वर ऑफर्ड द प्रिंसिपल ऑनर्स एक्सेलेंस अवार्ड. तो इसके बारे में ज़रा बताएं कि व्हाट वाज इट अबाउट, क्या प्रोसेस था व्हाइल वर्किंग ऑन इट, एंड हाउ इट फेल्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर दिस आर्टिस्ट फॉर यू थ्रू एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, वो भी एकेडमिक फील्ड में.
अच्छा, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता.
हाँ,
ये सच, ये बिल्कुल सच जवाब है. यकीन करो, मैंने कभी निकाल के अपनी डिग्रीज को नहीं देखा, मैंने कभी अपने अवार्ड्स को नहीं देखा, मैंने कभी उन सर्टिफिकेट्स को ध्यान से मुँह नहीं लगाया. वो तब इम्पॉर्टेंट लगता था बिकॉज तब आपने एक अपने लिए एक गोल सेट किया होगा.
yes.
कि मुझे ये एक दो तीन चार साल बाद मुझे ये डिग्री चाहिए, राइट.
अब
जब आप बाहर निकलते हो उस इंस्टीट्यूट से, एंड देन यू सी दैट देयर सो मेनी गोल्स. प्रॉब्ली योर गोल इज़ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड मेक योर कप ऑफ टी, है ना. तो वो जो इतने बड़े बड़े जाइगेंटिक प्रेशर वाले प्रेशर कुकर गोल्स होते थे ना, वो अब मजाक लगते हैं. तो इसीलिए अब मैं इन अवार्ड्स को, अभी यू मेंशन इट ना, तो मैं एकदम से याद आया कि अच्छा ये भी था मेरे.
यस, यू सेड दैट.
आई डोंट रिमेंबर दीस थिंग्स.
आई
डोंट रिमेंबर द मेनू. माय गोल इज टू कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन माय सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट आई एम. क्या मैं सोच रही हूँ? क्या मेरे काम से किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को फायदा पहुँच रहा है, मुझे क्या फायदा पहुँच रहा है? तो तब जो चीज़ मुझे बहुत चमकती हुई लगती थी ना, अब वो बहुत डस्टी हो चुकी. मुझे लगता नहीं है कि किसी भी आर्टिस्ट को या प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट को आप बुला के जब पूछोगे ना कि डिस्टिंक्शन मिलके कैसा लगा, अवार्ड मिलके कैसा लगेगा, वो आपसे कहेंगे कि हाँ थोड़ी बहुत. और दूसरा, हमारे प्रैक्टिकल फील्ड में ना इसकी इतनी वैल्यू भी नहीं है. सो फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू गो टू अ गैलरी एंड यू लुक एट वंडरफुल पेंटिंग्स, तुम्हारे दिमाग में कहीं से भी नहीं आएगा कि इसको डिस्टिंक्शन मिली है या इसको ऑनर्स अवार्ड मिला है या क्या मिला है. यू लुक एट द पेंटिंग ओनली, है ना.
यस.
और द स्कल्पचर और वट एवर आर्ट मीडियम देयर इज, आपने सिर्फ और सिर्फ वो काम देखना है. चाहे वो फेल होता रहा हो बंदा, चाहे उसके पास डिग्री हो ना हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये एक ज़रूरत थी मेरे ख्याल से पूरा करने के लिए. आई टीच इन एनसीए, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए.
नहीं, लेकिन मुझे आपकी बात समझ आ गई, आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हैं. बिकॉज व्हेन यू लुक एट आर्ट पीसेज और व्हेन यू गो टू गैलरीज, आप बस देखते हो हाउ यू कैन रेजोनेट विद इट एंड देन यू एडमायर, क्योंकि हमारे मुल्क में यू नो देयर सो मेनी डिफरेंट वेज दैट पीपल आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. मैं जैसे रिसेंटली अभी बीएनयू के उस पर गई थी, थीसिस डिस्प्ले का पे गई थी, एंड आई वॉज अमेज. आई वॉज लाइक, look at what these students are doing. I was so proud of them.
Haan.
Ke like bilkul landscape change hogi how you are expressing yourself or
the scale also. Scale kitna change hua hai, dekha hai tumne?
Massively.
Haan.
To main to pleasantly surprised thi. देख के, तो मेरे लिए तो उतना ही काफ़ी था. मुझे ये नहीं था कि ओके ऑफ कोर्स मैं देख रही थी अच्छा इस लड़की ने किया है, ये लड़की यहाँ से आई है, इसने क्योंकि बलूचिस्तान से और कहाँ कहाँ से ये लड़कियाँ, गिलगित की, तो मुझे बस ये चीज़ें मैं देख रही थी ऑफ कोर्स कि ओके दैट्स. मैंने जब बात की उनसे, ये चीज़ें डेफिनेटली मैंने कंसिडर की, बट या यू राइट कि ये नहीं देखा कि ओके क्या क्या अचीव किया ये वो, मतलब ऑफ कोर्स दे कैन सेलिब्रेट ये इस तरह करके, बट यू आर राइट अबाउट दैट.
आई थिंक इट मैटर्स टू द बायर समटाइम्स और प्रोबेबली सम गैलरीज, और अगर आपने आगे जाके लेट्स से आपने बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर इन चीज़ों का फर्क पड़ता है
डेफिनेटली.
और एकेडेमिया की फील्ड में अगर आप जाना है तो वहाँ पे वो एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चलता है ना.
जी जी,
तो उस पर तो बहुत फर्क पड़ता है. अभी भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम हमारा जी पी ए नीचे जा रहा है, गिर रहा है, तो मैं कहती हूँ ठीक है, यू आर अवेयर ऑफ दैट कि तुम्हें जी पी ए ही चाहिए अपना, है ना, तुम्हें अपने एक्सप्रेशन पे इतना फोकस नहीं करना.
गोल्स क्लियर है.
ओके, हाँ गोल्स क्लियर है, ठीक सही है. मेरे थोड़े क्लियर के बाद अनक्लियर हो गए, बिल्कुल ही अनक्लियर हो गए. तो अभी बस मुझे बस पेंट करना है और कुछ भी नहीं.
आई थिंक आर्टिस्ट के लिए बहुत डिफरेंट होता है क्योंकि हम पूरे कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ इसी पे फोकस होता है कि जी पी अच्छा आ जाए एंड यू नो हम निकल जाए एक अच्छी डिग्री के साथ.
अच्छा, इतना आर्टिस्ट में नहीं होता.
आर्टिस्ट में नहीं होता, यहाँ
फाइन आर्ट्स की फील्ड में इतना ज़्यादा नहीं होता. हम लोगों को डर ये लगता है कि हम लोग, बिकॉज मार्केट हमारी इतनी, इट्स अ बेबी स्केलेटन, आई कॉल इट बेबी स्केलेटन. अभी उस पर कोई फ्लैश और कोई कुछ नहीं है उसके ऊपर, मार्केट के ऊपर. सो इट्स वेरी फ्लिम्जी, इट्स बेयरली देयर. तो उसमें एग्जिस्ट करना, इकोनॉमी के साथ लड़ना, इन्फ्लेशन रेट के साथ लड़ना, ये बहुत, you constantly question your choices कि मैं पाकिस्तान में, I am a female artist in Pakistan, how can I survive? और आपको रोज़ कोई ना कोई बंदा आके कह रहा होता है कि बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ. और वो भी एक consideration है, but जब आपने degree यहाँ से ली है, आपकी ज़ुबान यहाँ पर है, आपका सब कुछ यहाँ पर है, तो अभी अभी वो वाली battles चल रही है कि the battle of sense of belonging, अभी वो वाली चीज के साथ हम.
सो इट्स मोर पर्सनल,
इट इज मोर पर्सनल हर आर्टिस्ट,
क्योंकि मैंने बहुत अपने इर्द-गिर्द लोगों से सुना है कि हाउ आर आर्टिस्ट सर्वाइविंग इन पाकिस्तान टुडे, एंड आई वाज लाइक मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है. किसी आर्टिस्ट से बात करके, उनसे इंटरेक्ट करके समझ आएगी. बट डू यू थिंक दैट इज द केस?
इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन पाकिस्तान. बीइंग अ फीमेल आर्टिस्ट, आई थिंक इट इज मोर डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन पाकिस्तान. पीपल टेक यू लेस सीरियसली. व्हेन आई गॉट मैरिड, so many galleries, so many people, I was working with them previously, and they texted me, they called me, and they're like, acha, what are your plans? Maine kaha, kya matlab, what are my plans? I will paint, main apna kaam karungi, jo meri commitment hai wo main aapke sath puri karungi. Haan theek hai, khuda na khasta ko mujhe kuch ho jaye, mere sath agar koi aur issues aaye to main commitment delay kar dungi.
Bilkul.
But they were so they stop investing in you. आई रिमेंबर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम अ बायर, जिसने मुझे कहा कि अच्छा अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे रहा हूँ, मैं अभी तुम्हारा काम नहीं खरीदूंगा, आई वॉन्ट टू सी कि तुम दो तीन साल में काम प्रोड्यूस करती हो तो मैं तुम्हारे काम में इन्वेस्ट करूँगा. मुझे लगा कि मुझे सजा मिल रही है इस चीज़ की, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ वुमेन लीव, काम करना छोड़ देती हैं, और समझ भी आती है मुझे क्यों छोड़ देती हैं. बर्डन पर इतना ज़्यादा पड़ जाता है, especially if you go into motherhood wala side.
Yes.
Paint karna is a very tiring job.
Yes.
Making art is a very tiring job. To ye mujhe lagta nahi hai ki aadmi is conversation se kabhi guzarte bhi hain. I don't think ki ek male artist ko ye call aati hogi ki
shaadi ho gayi
hai to tumhari exhibition hum abhi kaam nahi khareed rahe, tumhara thode der ke liye ruk jao. And to fight through that time, I think it was the most hardest time of my life, ki log mujhe isliye, and I was afraid of telling people that I have a partner. मैं बताती नहीं थी कि ये मुझे ना जज करेंगे और ये मुझे सीरियस लेना बंद कर देंगे. सो या आई डोंट नो ये कहाँ से एकदम से प्रोजेक्शन आई है मेरे दिमाग.
या नहीं, आई अंडरस्टैंड. आपने जो मास्टर्स प्रोग्राम था फाइन आर्ट्स में, उसमें यू रिवील्ड द अनसीन स्कार्स ऑफ पार्टीशन 1947 और आपने उसको किया था थ्रू द हेल्प विद द हेल्प ऑफ विजुअल आर्टिस्ट, तो उसके बारे में बताया बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. आई नो अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स वुड बी टू बिकॉज ऑफ आर इंग्लिश लिटरेचर डिग्रीज, तो हमें ज़्यादा होगा कि ये आपने थ्रू आर्ट फॉर्म और मीडियम कैसे किया, क्या प्रोसेस था एंड क्यों किया आपने.
हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मैं आपको भी पूछती हूँ कि मेरा माई डिग्री वॉज इन विजुअल आर्ट्स और आर टीचर्स, आई रिमेंबर गोइंग टू माई सुपरवाइजर एंड शी टोल्ड मी कि यू कैन योर जो लाइक द थेरी वाला रिसर्च यू कैन गो इन टू एनी एरिया. मैंने कहा एनी एरिया, मैंने कहा हाँ नहीं नेसेसरीली वो तुम्हारे काम से लिंक नहीं करना चाहिए बिकॉज इफ यू लुक एट माई वर्क यू डोंट सी 1947 पार्टीशन लाइक नॉट विजुअली.
यस,
बट माई ग्रैंड मदर शी हैड हर हिस्ट्री. मेरे बाकी भी फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग थे जिनकी अच्छी खासी ट्रोमैटिक एक पूरा बैकग्राउंड था पार्टीशन का एंड दे वर नेवर एक्सप्रेसिव ऑफ दैट. वाज वेरी क्यूरियस कि ये बात क्यों नहीं करते इसके बारे में. मेरे साथ कुछ ऐसा हो तो मैं तो हर वक्त बोलती रहूँ, है ना. तो उस पर फिर मैंने देखा कि राइटर्स वर वेरी एक्टिव ऑफ दैट टाइम. आई थिंक अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स वर वेरी एक्टिव स्पेशली इन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर. यू लुक एट मंटो,
यू लुक एट
अस्मत चुगताई और आपके और भी बापसी सिद्धवा.
Yes,
your writers were very active about that thing. Your visual artists, like necessarily painters, they weren't.
Okay.
You don't find a lot of आपको मिलती हैं. जिमी इंजीनियर इज़ वन ऑफ द पेंटर्स बट उनकी पेंटिंग भी इज़ वेरी, व्हेन यू लुक एट द पेंटिंग्स वो आपको लगता है कि पार्क स्टडीज़ की किताबों में जिस तरह पार्टीशन का नक्शा है ना कि बड़ी बड़ी ट्रेन्स खून से लदी हुई. एंड पार्टीशन इज़ मोर देन दैट.
बिल्कुल,
पार्टीशन इज मोर देन ऑब्वियसली द ग्राफिक वॉयलेंस इज देयर बट इट इज़ इट्स डिसप्लेसमेंट ऑफ एन एंटायर नेशन. इट्स अ पूरा नेशनल ट्रामा जो हमारे साथ आया है. सो वेरी फ्यू विजुअल आर्टिस्ट वर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट और मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग्ड फ्रॉम बांग्लादेश और इंडिया, प्रेजेंट डे इंडिया. पाकिस्तान में नहीं है, बहुत कम है, मतलब टू नेम अ फ्यू. अभी प्रेजेंट जनरेशन में फिर भी लोग काम कर रहे हैं. और मुझे थोड़ा सा अपने थीसिस पे काम करते हुए ये अंदाज़ा हुआ बिकॉज हमारा स्टेट प्रोपेगेंडा वॉज वेरी एक्टिव.
ओके,
वी वॉन्टेड टू फॉरगेट. अभी भी ना, इफ यू लुक एट आवर स्टेट प्रोपेगेंडा, वी वर बॉर्न व्हाट 70 इयर्स अगो. 70 इयर्स ही है ना,
आई थिंक. यू डू द
मैथ्स, आई एम हॉरिबल एट मैथ्स. तो हमने जल्दी से अपने आप को ना बस ऊपर से नीचे फेंक के अपनी आइडेंटिटी दी है. वी डू नॉट वॉन्ट टू कंसिडर के 1947 से पहले वी हैड अ सिविलाइजेशन कल्चर एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट वर नॉट फोर्स्ड बट दिस वॉज देयर सॉर्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस के लेट इट गो, ब्रश इट अंडर द कार्पेट वाली जो चीज़ चल रही थी. सो आई कुड नॉट, सरप्राइजिंगली आई कुड नॉट फाइंड मैनी पेंटर्स वर वर्किंग ऑन इट एंड जस्ट अ हैंडफुल ऑफ देम. और उन पर फिर मैंने अपना थीसिस दिया बिकॉज राइटर्स तो आपको मिलते हैं, विजुअल आर्टिस्ट बहुत कम मिलते हैं, नेसेसरीली पेंटर्स, स्कल्प्टर्स. सो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था कि कैसे एक पूरी की पूरी नेशन खामोश बैठी हुई थी और अभी भी मुझे इसका जवाब नहीं मिला कि क्यों नहीं हमने इतना चीखा, क्यों हमारे पास, वी शुड हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ मंटोस, है ना.
यस,
अभी हमारे साथ अगर वॉर और टेरर वाली चीज़ चलती है और अभी भी हमारे ऊपर जो एक लाइक दिस न्यू लवली वेव ऑफ फेमिनिज्म, अ लॉट ऑफ फीमेल आर्टिस्ट, अ लॉट ऑफ मेल आर्टिस्ट वर वर्किंग ऑन इट ना.
यस,
ये तो कुछ और ही लेवल का एक स्लाइस था.
यस यस यस.
सो ये चीज़ मुझे आज तक परेशान करती है और मैंने अपने मास्टर्स में इस पर बहुत दिमाग खपाने की कोशिश की. स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट. अभी मैं अगर इफ़ आई विल परस्यू माई PhD फर्दर तो मैं इसी पर फोकस करती रहूँगी.
आई थिंक यू शुड. आपने बात की वॉर ऑन टेरर की. व्हेन आई वाज डूइंग माय MPhil तो हम लोगों ने मुस्लिम वुमेन्स वॉइस का हमारा कोर्स था एंड वी वर जस्ट, इट वॉज एक मिनी प्रोजेक्ट सिचुएशन थी एंड I talked about this, मुझे उनका नाम भूल गया, but do you remember this woman on National Geographic cover? I forgot her name.
The portrait of that girl?
Yes, yes. हाँ. Woman, girl, and then जब वो बड़ी भी होगी तब एक
हाँ ठीक है ठीक है ठीक है
हाँ. And it was done by a white man, वो जो photographer थे and it pissed me off a lot, even though I covered it, look, it's very hard. It's very hard to find accounts जो कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ अभी आपको मिल जाएंगे. People have started to actively work young girls, women, men even, I would like to consider that as well. Lekin mujhe irritate kar raha hai ki mujhe unka naam bhool gaya, but I,
it's okay.
Yeah, lekin unka, because I don't want to like disrespect her in that sense. Lekin yeah, to mujhe aapne jab ye baat ki to mujhe wo cheez ekdam se yaad hai, I couldn't help but mention it. To ye cheeze hoti hain, yes, and I think you rightly titled it the unseen scars, kyunki bahut sare accounts hain aise जिनके ऊपर उस दौर में बात नहीं की जाती थी. लाइक मंटू ने बेशक लिख दिया हो, बट नो वन वॉज रेडी टू यू नो हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट आउट देयर. जो मीटिंग्स होती थी एंड एवरी थिंग, ही वॉज बेसिकली रिडिक्यूल्ड एंड शंट फॉर इट कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट इट. इतना रॉ अकाउंट कैसे तुम दे सकते हो, हाउ डेयर यू. So I think that makes perfect sense.
But I think one counter argument is that कि हम लोग अब पुराने जख्मों को लेकर बैठ नहीं सकते. इवन व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय थीसिस, टू और थ्री ऑफ माय टीचर्स वो मेरे पास डेली बेसिस पे आए कहते थे कि सांप चला गया तुम लकीर को पीट रही हो, है ना. लुक एट द प्रेजेंट डे इंडिया, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है. और मैं कहती थी लुक एट द प्रेजेंट डे पाकिस्तान, आप अपनी कौम की हालत देखा करो जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है. आपके ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाते हैं. चलो मुझे वो भी, हम उसको भी किसी तरह से कहीं से हेल्दी पैरामीटर में डाल सकते हैं, बट this much hatred. We love Bollywood, theek hai,
we do.
We want to, Delhi and Lahore are identical cities. हमारे अंदर हमारा जो दिल है ना वो कहीं ना कहीं चीखता है कि हम एक ही तो कौम है, एक ही जुबान बोलते हैं. हमारा especially in पंजाब तो was properly dissected ना अच्छे तरीके से. पंजाब तो सेंट्रल था जिसको पार्टीशन, ब्लडी पार्टीशन जिसपे हुई थी, वहाँ भी वो है यहाँ भी वो है. मेरा गांव 90% ऑफ द पॉपुलेशन वाज सिख पॉपुलेशन इन माय गांव. नाउ आई गो देयर, आई डोंट इवन फाइंड वन फैमिली, आई कांट इवन फाइंड वन फैमिली. मतलब सबका सब वाइप आउट हो गया. इतना बड़ा स्केल कहाँ चला गया. ये जो नफरत है ना, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ती. ये जो नफरत हमें घोल घोल के पिलाई गई है, दुश्मन अनासिर, इवन जो स्टेट प्रोपेगेंडा भी अभी आपको एक्टिव नज़र आता है, आपकी पूरी की पूरी एक डिफेंस है जो उसके बल पे चलती है. पता नहीं ये नफरत इधर नहीं जा रही है. दिल के अंदर तो फिर भी हमने डाल दी है थोड़ी बहुत, दिमाग में नहीं आ रही है.
आई थिंक लोगों में मैं बहुत कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि ये कहाँ से प्रोपोगेट हो रही है, कहाँ से ये फैल रही है. एक आप होता है, क्योंकि मैं जब देखती हूँ, जैसे रिसेंटली आप एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटी सी, दिलजीत की जो परफॉर्मेंस थी एट द जिमी फैलन शो, उसको अक्रॉस बॉर्डर्स हम भी उसको सेलिब्रेट करें. आई हैव सीन सो मैनी पीपल प्रेजिंग हिम बिकॉज वो हार्मलेस सा बंदा है ना. उसने ही इज़ लाइक अ सुपर, मतलब सुपरस्टार भी नहीं कहूँगी, मतलब इज लाइक अ ग्लोबल आइकॉन राइट नाउ. एंड हिज म्यूजिक इज, हम इंजॉय करते हैं. कौन सा ऐसी शादी है जिसपे उसका म्यूजिक नहीं चलता और जिसपे प्रैक्टिस नहीं होती. यहाँ भी होती है, उधर भी होती है, पंजाब में होती है, इधर वाला पंजाब हो उधर वाला पंजाब हो, दोनों जगहों पर होती है. मैं विदाउट एनी शेम, आपने दिल्ली की बात की, मैं उनके सड़कें, उनके पूरा वक्त देख रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे, उन जो लड़कियों के क्लोदिंग हो गई, उनके बाजार्स हो गए. मैं बहुत, आई डोंट नो व्हाई, बट समथिंग पुल्स मी इन दैट डायरेक्शन. एंड एक मेरे लिए आई ओपनिंग मोमेंट तब था जब देयर्स दिस बुक जिसमें रेमनेंट्स ऑफ सेपरेशन,
आई लव दैट बुक,
दैट चेंज्ड माय होल पर्सपेक्टिव. मुझे था कि वो लोग तो इतनी मोहब्बत करते हैं शहर से, लाहौर,
आंचल मल्होत्रा,
यस आंचल मल्होत्रा, यस, इतनी मोहब्बत, दे मिस दिस सिटी. एंड आई वाज वेरी इमोशनल व्हाइल्स रीडिंग इट, के मैं तो कुछ और ही सोचती थी. वहाँ के लोगों के तो जो वूंड्स हैं वो रीमर्ज इस तरह से होते हैं कि उनको नॉस्टैल्जिया होता है देख के कि ये हमारा शहर था, ये हमारी सड़कें थी, हम यहाँ पढ़े थे, हम यहाँ ये करते थे, यहाँ पे पैदल चलते थे, वहाँ पे चलते थे. और बिल्कुल ही अब चेंज, पता नहीं कहाँ से ये प्रोपेगेट होता है. इट्स अ वेरी लाइक, बहुत ही शायद बिग स्केल पे कुछ होता है.
जब व्हेन आई रेड रेमनेंट्स ऑफ सेपरेशन ना, तो मेरे दिमाग में ना एक बड़ा क्लियर कट तीन बन रहे थे, हिस्से बन रहे थे. मुझे लग रहा था कि देयर इज दिस वन जनरेशन वेंट थ्रू पार्टीशन एंड प्रॉब्ली दे वर इन शॉक, दे वर साइलेंट अबाउट इट, मेनी ऑफ देम. बहुत कम है फैमिली में बुजुर्ग जो बहुत ओपनली बताते हैं कि ये हुआ.
जी, जी, जी.
पता है आपका पूरा का पूरा मुल्क, आपका घर, आपकी पहचान, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, खाना, कपड़े, सब कुछ बदल के हो गया और फिर उसके बाद देयर इज अनदर जनरेशन जो बाकायदा नफरत के साथ बड़ी हुई, जो मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, है ना, जिन्होंने इंडिया से पैदा होते ही नफरत करना सीखी है. देन द थर्ड जनरेशन प्रॉब्ली वी डोंट केयर.
या
तो तीसरी वाली से फर्क ही नहीं पड़ता. हमें अभी, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी वाली जनरेशन है हमें इंडिया से मोहब्बत भी करनी है या नफरत भी करनी है.
यस.
बट सबसे बड़ा मसला हमारी जनरेशन के साथ ये है कि हम पे वो पूरा का पूरा बर्डन फॉल करता है टू इन्वेस्टिगेट कि जो आइडेंटिटी आप लेकर पैदा हुए हो, तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो, वो अभी पैदा हुई हुई आइडेंटिटी है, उसके पीछे एक पूरा उस बेचारे की अबाव अजदाद पड़े हुए हैं उस आइडेंटिटी के. वी से दिस वेरी कॉमनली इन पंजाब, मुझे बाकी कल्चर्स का नहीं पता, वी से दिस वेरी कॉमनली के मेहंदी तो हिंदुओं का फंक्शन है. तो है बहुत ज्यादा एक अक्रॉस कल्चरल आपके आपके वो पाथवेज हैं.
बड़े सगीर में तो यही था
और हम बहुत मजे से उसको एंजॉय करते हैं. इस्लामिक लिहाज से भी बहुत कम फंक्शंस हमारे पास तो रहते हैं. तो एक तो हमने करना भी है, फिर हमने मानना भी नहीं है ना.
यस. पता है बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं है. मैं जब अपना थीसिस कर रही थी तो उसमें मैंने पढ़ा कि औरतें जो थी देवर बेसिकली, जो अब हमने फादर्स को रोल दिया है ना इन सोसाइटी, तो जब बरे सगीर में देर वॉज दिस, मुझे भूल गई उनकी कास्ट, बट वो क्या करती, वहाँ पे औरतें जो हैं शादी के बाद नहीं जाती थी, मर्द आते थे घर पे
रहने.
मतलब हाँ, ऐसे नहीं होता था कि औरत जाएगी मर्द के पास शादी के बाद.
लवली.
एंड शी वॉज द वन हु, ये नहीं होता था कि बच्चे उस पर सौंप दिए कि ओके यू आर द वन हु सपोज टू टेक केयर, ये वो, ऐसे कुछ भी नहीं होता था. या इट्स सॉरी कि मैं बिल्कुल, माय मेमोरी इज सो ऑफुल. या इट्स सो ऑफुल कि मैं इम्पोर्टेंट चीजें भूल जाती हूँ और इसकी वजह से मैं आई शाय अवे फ्रॉम टॉकिंग अबाउट इट. बट मुझसे रहा नहीं.
ना द इंपॉर्टेंट थिंग इज द फीलिंग ऑफ इट, जो तुम मुझे बता रही हो ना.
या बिकॉज़ आई डोंट वांट पीपल टू थिंक कि ये कहां से उठा के ले आई बात. दिस इज एक्चुअली, आई विल डेफिनेटली
चला देना.
या आई विल डेफिनेटली मेंशन इट इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट. मैं डेफिनेटली मेंशन करूंगी बिकॉज़ आई डिड एक्चुअली टॉक read it. Yeah. और मुझे पता चला कि बाद में जब with the British invasion everything, तब जाके उन्होंने ये चीज़ मना कर दी कि ओके दिस नॉट गोना हैपन, बिकॉज उनके इंग्लिश का जो कल्चर था और वो सारा, इट डिड नॉट मैच अप टू देम. दे वर लाइक कि हम तो ऐसे नहीं रहते, तो आप लोग भी ऐसे नहीं रहोगे. सो उन्होंने अपने जो वॉलिशमेंट कर सकते थे, जो लॉज पास करवा सकते थे, उसके अंडर फिर ये चेंज हो गया. मतलब ऐसे कैसे, हमने तो कभी ये सुना ही नहीं है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ने की ज़रूरत है. हम ऑफ कैमरा भी जब बात कर रहे थे, इट्स द वे वी आर रेज्ड. हमें क्या पढ़ रहे हैं हम, स्कूल में क्या किताबों में पढ़ रहे हैं हम, कौन सी किताबें उठा रहे हैं, कौन सी किताबें सेंसर हो रही हैं. यहाँ पर मुझे इतनी बेचैनी होती है जब मुझे ये हिट होता है कि हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं जो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो यहाँ आती नहीं है. क्यों नहीं हम पढ़ सकते?
इवन आंचल मल्होत्रा अब नहीं आ रही,
नहीं आते. वो तो मैंने पहले पढ़ी थी जब मैं कॉलेज में थी, तब ऐसा कोई सीन नहीं था.
और क्या मसला है उसके बारे में?
नहीं पढ़ सकती है वो, नहीं मुझे नहीं समझ आती.
इंडियन राइटर्स की किताबें
हाँ, आप नहीं पढ़ सकते हो आप. ठीक है, मुझे मूवीज का भी है, वो भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया. आई थिंक अब मैंने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि इंग्लिश मूवीज यहाँ लगती हैं, एनिमेटेड लगती हैं. अब देर इज अ लॉट ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड. जैसे इनसाइड आउट 2 का आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एंग्जाइटी एंड एवरीथिंग. तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम ऐसी फिल्म्स शोकेस करें, लेकिन ये चीज़ एक बहुत प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में. बहुत हम लंबी बात चल सकते हैं, हर टॉपिक पे हो सकती है. अब चूंकि अब हम मंटो और आपने वो सारा मेंशन किया, तो मैंने एक चीज़ और भी ऑब्जर्व की अबाउट यू, दैट आई फील लाइक यू हैव राइटर इनसाइड यू बिकॉज द वे यू ऑक्यूपाई योर सोशल मीडिया स्पेस और जिस तरह आप अपना आर्ट प्रोसेस शेयर करती हो और जिस तरह आप उसको लफ्ज़ों में बयान करती हैं टू योर ऑडियंस, इट फील्स वेरी ऑथेंटिक और बहुत रिलेटेबल साउंड करता है. देयर वाज दिस वन पर्टिकुलर रील दैट आई वॉच्ड एंड आई वाज लाइक एक मिनट ये मुझे पूरी सुननी है. एंड यू वर पेंटिंग ऑफ कोर्स इन योर स्टूडियो एंड एवरीथिंग, बट व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इट जस्ट इट फेल्ट लाइक इट टच्ड माय सोल नॉट जस्ट द हार्ट. एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग टू हैपन बिकॉज यू नो द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, ऐसे 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 स्क्रॉल कर रहे होते हैं. सो हाउ डू यू सी राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग थ्रू वर्ड्स इफ यू have ever considered it कि मैं सोच के बैठ के सोचूँ इसके बारे में?
मैं यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा लेट डाउन कर दूँगी. नो, आई डोंट थिंक आई कैन राइट वेल. आई डोंट थिंक आई स्पीक वेल. और मेरी कन्वर्जेशनल स्किल्स अच्छे हैं. मैं तो बल्कि मेरे बचपन में तो मेरा स्टैमर था और आई वॉज सच अ शाई किड कि मैं कोनों में घुस घुस के बैठती थी. मतलब इवन अगर लेट्स से कि स्टाफ रूम से अगर मुझे मेरे कोई टीचर कहती थी कि जाके बुक ले आओ या किसी को बुला लाओ, तो पूरी मेरी कोशिश होती थी कि ये झूठ हो जाए, मैं बेहोश हो जाऊँ, मैं गिर जाऊँ, मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, मुझे बस जाके किसी से बात ना करनी पड़े. एंड आई स्टिल हैव इट, आई एम वेरी शाई पर्सन. राइटिंग वाला जो आप बात कर रहे हो ना, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई मेरी इंटेलिजेंस या मेरा कोई मेहनत इन्वॉल्व है. व्हेन आई एम इन माय स्टूडियो आई एम माय सेल्फ, आई कैन नॉट लाई टू माय सेल्फ. आर्टिस्ट की जो स्टूडियो स्पेस है ना, उसमें उसका काम है, उसकी किताबें हैं, उसके रेफरेंसेस हैं, उसका अच्छा बुरा नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ लगा हुआ है. व्हेन आई इनवाइट पीपल इनटू माय स्टूडियो, मैं उनसे कहती हूँ इट्स लाइक आई एम इनवाइटिंग यू इनटू माय बेडरूम. ये सबसे प्राइवेट जगह है. हाँ, सबसे प्राइवेट जगह है मेरी जिंदगी की. तो जब वहाँ से कोई बात निकलती है ना, वो हमेशा सच निकलती है. मैं यहाँ बैठ के फिर भी थोड़ा बहुत प्रिटेंड कर रही हूँ, मैं इतनी साफ नहीं रहती. बहुत बुरे हाल में रहती
हूँ. आई थिंक मैं भी अपने रूम में सबसे ज़्यादा वोकल होती हूँ. व्हेन आई रिकॉर्ड समथिंग, मेरे दिमाग में कोई बात आती है ना, मैं कभी ऑफिस में बैठ के या उधर बैठ के रिकॉर्ड नहीं करती. आई एम लाइक कि मैं कमरे में कर लूँ बैठ के, क्योंकि वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं. आई एम लाइक ये मैं हूँ. वो आपका अपने आप को भी आप देख लेते हो, इट्स लाइक अ मिरर सिचुएशन.
रियलिटी पंचेस यू वेरी हार्ड जब, स्पेशली फॉर आर्टिस्ट व्हेन दे आर इन देयर स्टूडियो वर्किंग स्पेस. तो जो ये जितनी भी ये जो जब मैं लिखती हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट लगाती हूँ या कुछ बोलती हूँ ना, तो मैं हमेशा अपने स्टूडियो में बैठ के ये चीज़ करती हूँ. और मैं मुझे एक चीज़ से बहुत डर लगता है कि आप दोगले ना हो जाओ. आप
खुद के साथ
खुद के साथ दूसरों के साथ तो मुझे फिर भी बर्दाश्त है.
यस यस यस.
खुद के साथ नहीं, दूसरों के साथ तो किसी हद तक होना भी पड़ता है, क्योंकि हर कोई डिजर्व नहीं करता.
यस यस यस.
आपकी असलियत देखना.
यस.
लेकिन खुद के साथ ना हो तो व्हेनेवर आई टॉक अबाउट माय वर्क आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट कि समटाइम्स आई एम नॉट दिस पेंटर हु वांट्स टू प्रूव समथिंग और उसके काम में कोई मैसेज है. आई हेट दिस लाइन, आपके काम में क्या मैसेज है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर the female perspective. I'm trying to see myself through my paintings. I always paint people I know, either my sister or my mother or my dadi or my friend. These are the people, these participants, I don't call them subjects. They're not outsiders.
Yes. Anna?
These are the people whom I have spent my time with. Mujhe pata hai ye haste hue kaise lagte hain, ye rote hue kaise lagte hain, inka body, inko haath pakad ke kaisa feel hota hai. मैं बहुत रोमांटिक इंसान हूँ. तो जब भी मैं किसी को पेंट करती हूँ, मुझे वो शख्स बड़ी हद तक अंदर बाहर से पता होता है. तो जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलता. एंड ये एक ट्रिक है दैट यू अप्लाई इट टू, सो यू कैन अप्लाई टू सो मेनी आर्टिस्ट. जब भी उनका काम देखो, उनसे उनके काम के बारे में हमेशा बात करो.
Okay.
हमेशा जाके पूछो. और इफ़ दे आर यूजिंग दिस यूनिवर्सल लैंग्वेज, गूगल पिक्ड लैंग्वेज, आई डोंट नो वाई, बट यू लूज इंटरेस्ट इन अ लिटिल टाइनी बिट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो फॉर देम. यू नो, इफ यू आर फैसिनेटेड विद अ पीस ऑफ एप्पल, टॉक अबाउट इट. टेल मी दैट यू लाइक दिस पीस ऑफ एप्पल. सो व्हेन आई टॉक अबाउट माई वर्क, माई स्ट्रगल्स, कि मैं रोज़ उठ रही हूँ, मैंने पौधों को पानी देना है, मैंने चाय बनानी है, मैंने स्टूडियो में ब्लैक एंड वाइट आज पेंटिंग पे काम करना है, और ये ब्लैक एंड वाइट कलर मुझे कौन सी मेमोरी लेन में लेकर जा रहा है.
बिल्कुल.
दीज आर जस्ट ऑनेस्ट टीनी टाइनी थिंग्स. आई फोकस ऑन दीज थिंग्स. आई ट्राई टू रीड अ लॉट, बट तुम्हारी तरह मुझे याद नहीं रहती चीज़ें.
हाँ, मुझे भी नहीं रहती.
भूल जाती है.
इवन दो आई रीड एज वेल, लेकिन भूल जाती है. आई डोंट नो व्हाई, मैं डिलिबरेटली नहीं करती. आई हैव लाइक, मैंने अलार्म लगाया हुआ है हर चीज़ का. इट्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल, जब मैं किसी की बर्थडे, मैंने इतने लोगों की बर्थडे सेव किए, पीपल एक्चुअली गेट ऑफेंडेड के मेरी बर्थडे याद है. लाइक मेरा मसला है, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज. एंड आई थिंक अब लोगों को समझ आ गई ओवर द इयर्स, जितना ज़्यादा किसी ने टाइम गुजारा है मेरे साथ ओवर द इयर्स, देयर लाइक ओके, ये जान के नहीं करती एक्चुअली, मैं इसको कुछ बताओ तो ये भूल जाती है परसों कि ये बात हुई थी. तो आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल
थिंग. इट लवली, वो आपके अंदर वो जो एक चाइल्डिश क्यूरियोसिटी होती है ना, इसको जिंदा रखता है. नहीं लगता हर चीज़, हर इंटेलेक्चुअल, हर क्रिएटिव इंसान के अंदर वो जो बच्चा होता है, जैसे बच्चे किसी हैरत कहते हैं जैसे हम लोग उर्दू में, वो थोड़ा बहुत आपके अंदर जिंदा रहती है ना. सो इफ आई फॉरगेट सम ऑफ माय फेवरेट बुक्स, आई विल रीड देम अगेन.
यस,
मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा उसको पढ़ने में.
बिल्कुल
सो थिंक ऑफ द पॉजिटिव.
मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब मुझे कोई भूल जाए ना, एंड देन आई एम लाइक आई यू नो पुट इन मैसिव एफर्ट कि मैं उस चीज़ को दोबारा याद करूँ, और यू नो एक क्यूरियोसिटी होती है कि नहीं नहीं मुझे रिविजिट करना है दोबारा, लाइक आई वांट टू गो बैक एंड चेक, कि क्योंकि मैं नहीं सेटल डाउन कर पाती जब तक मुझे पता ना चल जाए दोबारा से. सो या ये एक चीज़
होती है. एंड सेकेंडली आई हेट यूजिंग AI एज अ लैंग्वेज टूल.
जस्ट लाइक मी.
मेरी इतनी हीटेड कन्वर्सेशंस होती हैं अपने दोस्तों के साथ, और इवन विद माय स्टूडेंट्स आल्सो. आई नो माय स्टूडेंट्स, आई नो देम इनसाइड आउट मोस्ट ऑफ देम. और जब वो मेरे पास आते हैं ना AI जनरेटेड टेक्स्ट लेकर, तो मैं उनसे कहती हूँ पश्तो में लिखो, पंजाबी में लिखो, रब्त ना बनाओ. हमारे पे बात करते हुए कोई रब्त नहीं बनता.
नहीं,
हम अंग्रेजी उर्दू
मिक्स होती
है, पता नहीं कि पंजाबी में, तो तीनों लैंग्वेजेस इकट्ठी करके बोलती हूँ. कहती हूँ मुझे वो लिख के ला दो, मुझे ये फैंसी गूगल जनरेटेड टेक्स्ट उठाकर ना ला कर दो.
आप कभी उनको भी कहें कि आप पढ़ के देखो आपको समझ आई आपने क्या.
हाँ नहीं, वो तो पता चल रहा होता है ना, वो तो उनको कुछ भी पता नहीं चल रहा होता. तो तुम्हारी इस बात से ना, जो तुम कह रही हो कि तुम तुम्हारा एक्सप्रेशन है काम में, वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो सिर्फ सच है.
सच है,
वो अगर हर कोई सच बोलना शुरू कर दे कि मेरे जुमले में हर जुबान आ रही है, मेरे जुमले में हर जायका आ रहा है, तो उसको आने दो, उसको जाने नहीं दो.
पता, लोगों को एक फियर भी होता है ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ. आपने भी थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी, बिकॉज आई रिमेंबर इन कॉलेज अ फ्रेंड केम अप टू मी, शी वाज लाइक कि मुझे तुम्हारे जो तुम लिखती हो, बिकॉज तब ये बहुत होता था, कैप्शन इतने लंबे लंबे लिखते थे इंस्टाग्राम पर, पीपल यूज टू एक्चुअली रीड देम. दिस वाज द वर्ल्ड बिफोर रील्स, आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर फॉर ऑल द जेन ज़ीज़. तो तब ये होता था कि वो लोग पढ़ते थे एंड शी वाज लाइक कि तुम जो लिखती हो तुम सच लिखती हो. That's why people like you know read it. और ये, और पता है मुझे ये बात हिट ही नहीं हुई. मुझे तो लगता था कि बस राइटिंग होती है कि बस जो है दिल में वो लिख दो बस. मैंने अपनी बड़ी इनोसेंस में जो होता था मैं लिख देती थी, इफ आई हैड अ बैड डे और इफ आई अगली क्राइड और उसके पीछे जो भी रीज़न होता था मैं लिख देती थी और पोस्ट कर देती थी, एंड नहीं सोचती नहीं थी कि बस यही है ना. सो व्हेन आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम गर्ल्स कि यू नो उन्होंने पढ़ा तो दे वर ओके आफ्टर इट, इट्स सो क्रेजी. दिस गर्ल केम अप टू मी ईद पे, मेरी कज़न की दोस्त, तो बहुत छोटी वो स्कूल गोइंग, एंड शी वॉज लाइक कि जब मैंने आपका वीडियोज़ वगैरह देखी और आपको देखा तो मुझे हुआ कि मुझे ऐसा लगा, मैं जब मैंने सुना कि आपको यू नो बॉडी शेमिंग और ये कमेंट्स आते हैं या कोई लोग ये करते हैं, शी इज़ लाइक मैं ठीक हो गई उसके बाद. दिस इज़ लिटरली ऑल शी सेड, शी इज़ लाइक मैं ठीक हो गई उसके बाद. बिकॉज आपने अकेला नहीं महसूस किया ना, क्योंकि मैं तो बस आई थिंक कभी कभी लोगों को सच कह देना चाहिए. कह दें, वो खौफ दूर कर दें, हटा दें, क्योंकि कोई और ऐसा है जो बैठा हुआ है and they're not no longer going to feel alone.
Yeah.
आपने उनको उनकी misery से, उनकी solace से, और जो उनको solitude नहीं चाहिए उससे आपने उसको absolve कर दिया. They're fine now.
This reminds me of someone, Zarina Hashmi. She's no longer. Zarina Hashmi was a very famous painter, printmaker, और she worked on partition her entire life, और very openly. Again, she's one of the few people जिन्होंने बहुत खुल के पार्टीशन पे बात की थी, विजुअल आर्टिस्ट में कह रही हूँ. तो ज़रीना हाशमी का मैं एक इंटरव्यू सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि लोग उनसे यही पूछते थे आके कि व्हाट डू वी डू नाउ, हमने अब पार्टीशन हो गई, अब आप कब तक उसको रोती रहेंगी बैठ के. तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई मेरे पास आता है और मेरे प्रिंट्स और मेरी पेंटिंग्स को देखता है और मेरे कंधे पर सर रख के तो रोना शुरू कर देता है कि ये जो तुम्हें तकलीफ हो रही है ये मुझे भी हुई थी, दैट्स इट. This is what art is all about.
Yes.
It's about connectivity. It's about relatability. और ये जो तुम अभी बात कर रही हो ना कि if you talk about something or the other person feels understood, कि मैं अकेली नहीं हूँ जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हूँ, इस चीज़ से रो रही हूँ, और वो खड़ी हो रही है मेरे साथ, तो वो नहीं महफिल में आप अकेले खड़े और पीछे दो तीन और ख़वातीन अगर आपके साथ आके खड़ी हो जाएं,
yes.
तो आप कैसे सर ऊँचा हो जाते.
yes.
ये सारी वो बातें.
बिल्कुल,
इसका मकसद भी ये है सच बोलने का, वनरेबल होने का. और आर्टिस्ट को तो ज़रूरत है, उसकी तो ट्रेनिंग ही होती है कि अपने अंदर से निकाल के सच बाहर. हम क्यों कहते हैं कि आर्टिस्ट थोड़े केयरफ्री होते हैं नेचर में. मैं सबसे ज़्यादा झूठ तब होती हूँ जब मैं फैमिली फंक्शंस में होती हूँ, बिकॉज माई मदर इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट मी कि तमीज़ से बैठो, तमीज़ से बात करो, अच्छे कपड़े पहन के आओ. मुझे अपना आप अपना आप नहीं लगता. मेरा कभी कभी दिल करता है मैं टांगे ऊपर करके बैठ के चाय पीऊँ, मेरा दिल करता है मैं किसी की गोद में सर रख के लेट जाऊँ. ये जो कॉन्ट्रास्ट चलता है ना हमारे साथ, ये हमें मारता है थोड़ा सा अंदर आके, क्योंकि हम सच बोलने वाले लोग होते हैं यार. हमें
ऐसा लगता
है
कि आई थिंक आई एम प्लेइंग अ रोल बस व्हेन आई गो बैक होम. या बस एक रोल प्ले हो रहा है एंड देन कट होगा फिर बैक होम एंड देन आई कैन बी माई सेल्फ अगेन.
तो वो तुम्हें तकलीफ नहीं देता? मुझे तो बहुत देता है.
या आई थिंक वो आप इम्यून हो जाते हो टू
ये
दैट.
डेंजरस है,
इट्स वेरी डेंजरस.
इम्यूनिटी नहीं डेवलप होनी चाहिए ना इस
बट द
चीज़
फैक्ट
की.
दैट आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन,
हाँ.
दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे पता है, जैसे आपने मेरे से पूछा मैं कह सकती कि पता नहीं आदत हो गई है बस जाने दे, जैसे लोग पार्टीशन का कह देते हैं बस अब हो गया ना आप क्या कर सकते. बट आई थिंक मैं उधर अभी पहुंची नहीं हूँ कि नहीं क्या हो गया. आई एम स्टिल लाइक एक्टिवली वर्किंग ऑन हाउ टू यू नो डील विद इट इन द मोस्ट पॉजिटिव मैनर. आपने जब पार्टीशन की बात की ना, मुझे से एक और चीज़ भी याद आई कि किस तरह लोग जब कहते हैं कि उनको बात अब हो गई ना, इतने साल हो गए हैं, जितने भी 65+ ईयर्स हो गए हैं अब इस चीज़ को, तो रहने देते हैं अब क्या. अब एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ट्रॉमा को हम जिस तरह देखते हैं, अब लोगों को ट्रॉमा की, मुझे भी बहुत टाइम बाद जाके समझ आती है कि ट्रॉमा एक्चुअली होता क्या है. इट्स नॉट कि जब आपको पहली बार होता है दैट्स नॉट ट्रॉमा. जब आपको दूसरी बार रिमाइंड किया जाता है that's when the trauma hits. It's the second time.
The reminder.
Yes, that's actually trauma. Not the first time it happened. Because जब पहली बार होता है आपको नहीं पता होता. आपको नहीं पता if you're harassed as a kid, if you are like जो भी आपके साथ assaulted as a kid और कुछ भी आपके साथ होता है, आपको तब तो समझ नहीं आती कि क्या हुआ है. आप तो तब उसको बयान भी नहीं कर पाते हो, या अगर करते हो तो चुप हो जाओ, जो भी आपका डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. जब आपको दूसरी बार में व्हेन समवन टचेस यू और लाइक व्हेन यू आर इंटीमेट विद समवन और बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग ऑन, तब आपको होता है एंड यू आर लाइक ओ
ये था
दैट्स व्हेन. तो इसीलिए जब पार्टीशन के लोग क्यों, व्हाई दे आर लाइक, बिकॉज दे डोंट वांट कि वो ट्रॉमा, वो ओल्ड वाउंड्स री इमर्ज. दैट्स व्हाई दे आर लाइक
नहीं बात करनी
इसके बाद, बिकॉज ये नहीं है कि ट्रॉमा चल रहा है, वो अभी हिट ही नहीं हुआ, वो चाहते ही नहीं है कि वो हिट हो. सो दैट्स द रीजन व्हाई
मुझे भी
इट्स वेरी हार्ड.
और
मैं इसलिए भी थोड़ा वो हो जाती हूँ, चुप हो जाती हूँ, बिकॉज आई एम लाइक मुझे नहीं पता. मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ आई विल नेवर नो व्हाट इट वॉज लाइक टू बी इफ यू आर समवन हु हैड टू मूव, टू हाउ इट फेल्ट लाइक टू बी किक्ड आउट ऑल ऑफ अ सडन विद अ फ्यू बिलोंगिंग्स on whatever ride you had at that time and just move to a new place. Anjaan jagah, anjaan log hain, nayi duniya banani, I will never know.
Move to phir bhi shayad koi aur loves hai, you were kicked out.
Kicked out jaise maine bola.
Matlab wo to
agle din aapko kaha hai, keh raha hai koi ki jagah chhod do, ghar chhod do. वो आपका घर है. हमारी नानियों दादियों के लिए कितना मुश्किल होता है जब उनको कहा जाता है कि ओ अभी इस घर को लेके कोई छोटी जगह ले लेते हो. They're like, अगर मैंने मरना है तो इधर से
ही मरना है, इसी ज़मीन पे,
इसी
यहां मेरे अपने
इधर से ही लेके जाओ मुझे. कहती है ना,
क्यों
कहती हूँ, एक एसोसिएशन है हमारी मटेरियल चीज़ों से, घर से. तो इट्स वेरी हार्ड. तो आई थिंक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड.
बट ऑल्सो वाइल रिसर्चिंग ऑन पार्टीशन ना
जी,
मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ में डाइजेस्ट करने में आसानी हुई है पार्टीशन सर्वाइवर्स की बातें सुन के, क्योंकि नॉट ऑल ऑफ देम वर साइलेंट, सम ऑफ देम वर वेरी वोकल अबाउट इट. और यू हैव सो मेनी अब डिजिटल म्यूजियम्स, पार्टीशन म्यूजियम्स.
यस,
मेरे नहीं ख्याल से पाकिस्तान में कोई प्रॉपर पार्टीशन म्यूजियम है.
नहीं, नॉट डेडिकेटेड स्पेसिफिकली,
डेडिकेटेड इंडिया में तो है कुछ. लेकिन मैं जब डिस्प्लेसमेंट की बात करती हूँ ना, आई टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट इन माई वर्क ऑल्सो, कि I suffer from this feeling of losing something all the time. अगर आपने अपना बचपन ऐसा गुजारा है ना कि आपके हाथ से आपका बचपन किसी ने छीन लिया और किसी ने आपको हंसने नहीं दिया properly, किसी ने आपको खेलने नहीं दिया, किसी ने आपको बस आकर आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है कि अब आपने अपना पाँव यहाँ से यहाँ रखने से भी डर रहे हो, अब अपनी बॉडी के अंदर ही डरना शुरू हो गए. घर तो दूर की बात, मैं अपने हाथ पाँव टांगों के अंदर ही डरना शुरू हो गई. तो आप ना बहुत इनसिक्योर हो जाते हो अपनी चीज़ों के मामले में. लाइक आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू शेयर माई थिंग्स. वेन आई मूव्ड आफ्टर पोस्ट मैरिज, वेन आई मूव माई स्पेस, मैंने अपना पूरा पूरा स्टूडियो एग्जैक्टली उसी तरह से पिक करके शिफ्ट किया. अ फ्रेंड ऑफ माइन केम इनटू माय स्टूडियो, उसने मुझे कहा सना तुमने सोफ़ा भी उसी तरह रखा है जिस तरह पहले था. मैंने कहा मुझे ना वही चीज़ दोबारा चाहिए, मुझे वही टेस्ट, वही जायका, वही दीवारें, उस वो बुक उसी जगह पर जाएगी जहाँ वो पहले पड़ी हुई थी. पार्टीशन की जब मैं सर्वाइवर्स की बातें सुनती हूँ ना, मैं हैरान होती हूँ कि इन लोगों ने ये कैसे किया. काश मैं भी ये थोड़ा बहुत अचीव कर लूँ कि मैं नॉट डिस्प्लेसमेंट को बट चेंज को इतना वेलकम कर सकूँ.
वेरी हार्ड.
Some of them welcomed it wholeheartedly. ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को force करके निकाला गया था.
Yes, yes, yes.
The love for this new country was there.
Of course, of course.
हाँ. तो ये मुझे वो इसीलिए I connect this research with my visual art genre.
Okay.
किसी तरीके से.
That makes sense. मैं थोड़ा सा टीचिंग के बारे में भी बात करना चाहूँ बिकॉज यू आर लाइक आई मेंशन टीचिंग एट NCA. हाउ डिफरेंट इज इट पढ़ाना एक आर्ट फॉर्म को वर्सेस प्रैक्टिसिंग इट? आर देर एनी चैलेंजेस या आपको बहुत रिवॉर्डिंग लगता है यू नो टू कीप आर्ट अलाइव फॉर यंग स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड होते हैं इसमें?
मेरा काम तो नहीं है आर्ट को जिंदा रखना. टीचिंग इज अ वेरी रिवॉर्डिंग जॉब वैसे, बट इट्स वेरी ओवरवेलमिंग. और प्रेजेंट डे टीचिंग बिकॉज आप अब इंफॉर्मेशन देने के लिए नहीं. हमारा जो पुराना टीचिंग स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल उस चीज़ पे बेस करता था कि टीचर को पता है, उस्ताद को पता है, आपने जो जानना है उस्ताद से जाके पूछो. यू हैव टू एक्सेप्ट कि यू डोंट नो थिंग्स नाउ, दे हैव दिस गैजेट. उससे आप तो क्या, उनके पास करोड़ों उस्ताद इस वक्त उस फोन में, तो आप उनको क्या दे रहे हो? क्योंकि देखो मैं उनको आर्टिस्ट बताऊंगी, वो अभी मेरे सामने बैठ के गूगल कर लेंगे. मैं उनको लाइब्रेरी भेजने की कोशिश करूंगी, वो वहाँ बैठ के लाइब्रेरी खोल लेंगे. मैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त दे सकती हूँ, मैं उनको एक अंडरस्टैंडिंग कंधा दे सकती हूँ किसी तरीके का, मैं उनको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकती हूँ. आई हैव दिस कॉलीग और वो मुझसे अक्सर आर्ग्यू करते हैं, वो कहते हैं कि टीचिंग इज़ डेड, लाइक द ओल्ड स्कूल टीचिंग इज डेड. हमें नहीं ज़रूरत उस्तादों की, बट हमें मोटिवेटर्स की ज़रूरत है, हमें दोस्तों की ज़रूरत है, हमें थेरेपिस्ट की ज़रूरत है. इट्स प्रीटी मच लाइक थेरेपी. कभी कभी व्हेन आई टॉक टू माय थीसिस स्टूडेंट्स आई कम होम आई एम सो ड्रेन्ड कि मुझसे सलाम नहीं होता किसी को, मुझसे बात नहीं होती किसी को. मैं कहती हूँ कि मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कितने ज़्यादा बच्चे हैं और आधे रो रहे हैं, आधे डिलूजन में हैं, आधे तकलीफ में हैं. तो टीचिंग अब वो नहीं रही कि मैंने चार किताबें पढ़ के वो किताबें आगे दी. टीचिंग अब यह है कि मैंने अब उनकी ज़ुबान सुननी है और किसी तरह से उसको ट्रांसलेट करके अपनी ज़ुबान में उसको समझने की कोशिश करनी है. जेंजी आई डोंट अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज. आई एम अ वेरी पुराना देहाती पर्सन. ठीक है, हमने बचपन में मार खा खा के ब्रिटिश इंग्लिश तरीके से सीखी. देन देयर वाज अमेरिकन इंग्लिश, नाउ देयर इज दिस जेंजी इंग्लिश.
यस, उनकी अपनी होती है
व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड, बट करनी तो है ना. मैं वो अपने दिल में वो चीज़ लेकर नहीं बैठ सकती कि वो आज की जनरेशन ऐसी है. आई थिंक वो हमसे बहुत बेहतर है.
बिकॉज आई थिंक इट्स बेटर नॉट टू कैरी दैट फॉरवर्ड के, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली वो हमारी पेरेंट्स के जनरेशन को एक ओवरकम करना पड़ा कि उनको हमारी समझ नहीं आती थी. तो अगर हमें भी अब जेंजी की समझ नहीं आएगी और हम उनको बैठे रहेंगे ये चीज़ लेके कि ये तो अपना लेके अपने स्लैंग्स इन्होंने शुरू कर दी, हमें नहीं समझ आती. आई थिंक इट्स बेटर एंड आई थिंक पीपल हैव, हम लोगों ने इस चीज़ को वेलकम किया है टू अंडरस्टैंड देयर वेज. व्हाई नॉट?
सो टीचिंग इज नॉट नाउ गोइंग इन टू द क्लास रूम एंड सिटिंग ऑन अ टेबल. आपको उनके बीच में बैठना है, आपको टेबल पे बैठना है, आपको उनके जैसा, इवन इफ यू हैव टू ड्रेस अप लाइक देम यू डू. आपने उसकी लैंग्वेज को समझना है ना, तो आप कैसे समझोगे? सो इट्स अ होल अदर एक्ट, नॉट इवन अ जॉब. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टीचिंग नाउ, स्पेशली इन एन आर्ट कॉलेज. और आर्ट इतना फ्लूइड सब्जेक्ट है यार कि तुम सोचो अगर मैं तुम्हारे सामने, मैं तुमसे कह रही हूँ कि आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई ग्रैंड मदर्स ट्रामा, राइट? अब दो सेकंड के लिए तुम बैठ के सोचोगे कि ना वो तुम्हारी दादी हैं,
yes.
ना वो तुम्हारा ट्रामा है, वो उस बच्चे का है और वो शख्स इस वक्त मौजूद भी नहीं है. तो तुमने अब उससे कनेक्ट करना है. तुम्हें वक्त चाहिए ना उससे कनेक्ट करने के लिए.
एक दिन में नहीं होगा, एक क्लास में नहीं होगा,
एक क्लास में नहीं होगा. बट देन यू हैव 40-50 स्टूडेंट्स लाइक दीज and all of them wants to be heard, they want to be listened, consoled. So it's a, I don't know.
विच साउंड मोर लाइक थेरेपी हो सकती है, यू नो लाइक वो जो राउंड टेबल होती है,
होती है हाँ, इस तरह की आर्ट कॉलेजेस में मुख्तलिफ तरीके से पढ़ाया जाता है. आर्ट कॉलेजेस में आप आके लेक्चर नहीं देते,
यस
आप बल्कि लेक्चर लेते हो, आप सुनते हो, आप कन्वर्सेशन करते हो. वी हैव दिस क्लास विद फोर्थ ईयर्स जिसके अंदर वी कॉल इट ओपन स्टूडियो, जिसके अंदर यू जस्ट टॉक टू स्टूडेंट्स.
ओह
कुछ भी नहीं उन्होंने हम उनसे ये नहीं कहते कि आप अपनी चीज़ें लेकर आओ, ले आओ मटेरियल दिखाने के लिए, बट वी आर हेयर टू टॉक टू यू, वी आर हेयर टू लिसन टू यू. और दो से तीन टीचर्स बस बैठे होते हैं सुबह से 8:30 से 4:30, 5, 6 बजे 8-8 बजे तक घर आती हूँ मैं कभी क्योंकि मैं सिर्फ उनको बैठ के सुन रही होती हूँ. और सुनना इसलिए ज़रूरी है कि किसी ने हमें नहीं सुना, यू नो. काश मैं बचपन में भागी होती जब किसी ने हरास किया था, मैं 10 लोगों को जाके मैंने चीख के बताया होता. अब स्टूडेंट्स अगर मेरे से जाके बात करते हैं तो मैं, मुझे दुख होता है लेकिन मुझे एक खुशी ये होती है कि वो ट्रस्ट कर रहे हैं आपको.
यस दैट्स अ बिग थिंग.
और मैं उनसे कहती हूँ कि जाओ जाके चीखो और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ. मैं तुम्हें कभी भी शेम नहीं करूँगी. वी डोंट बॉडी शेम, है ना. वी डोंट जज पीपल. हम नहीं कहते कि तुम अंदरून सिंस से तुम्हारी टूटी जूती है तो तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकते.
तो लगता है मैं आधे से ज़्यादा टाइम ऑब्जर्व भी नहीं करती है छोटी छोटी.
हाँ मतलब कुछ भी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती
है
चीज़ें,
नहीं
है ना,
मीनिंगलेस.
हाँ और हम एक टाइम पे हमने इस तरह की टीचिंग देखी है.
हाँ ऑफ कोर्स
हमारी जनरेशन में तो कम से कम देखी
है. नहीं नहीं हमने पूरा उसी तरह पढ़े हैं, हमारे वही पुराने तरीके होते थे पढ़ाई के, हमने वो सब देखा हुआ. एक्चुअली हमने दोनों ही देखे हुए हैं बेशक एज स्टूडेंट्स हो या एज टीचर्स हो. बिकॉज आई रिमेम्बर जब कोविड था तब मैं एमफिल कर रही थी एंड जब मैं FCI तो वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका था इट वाज मोर रिसर्च बेस्ड ना. तो मेरी आर्ट की नहीं है इन द सेंस के ह्यूमैनिटीज़ में आया ना क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर है तो पढ़ाने का तरीका बहुत अलग था. तो मेरे लिए शुरू में थोड़ा सा वो था कि एक मिनट बिकॉज यू नो आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट जोन. एक डिफरेंट उसमें आना था जहाँ पे टीचर्स वो लाइक सिर्फ हम सारा दिन खड़े होकर आपसे बात नहीं करेंगे, आप बोलो क्या चल रहा है माइंड में जब ऑथर की आप ये देखते हो प्रेडिकमेंट, क्या माइंड में चल रहा है प्राइमरी कैरेक्टर को देख के एंटागनिस्ट को देख के, बताओ बात करो. एंड मैं होती थी कि मुझे तो लगा था कि
आप बताएंगे.
हाँ बताएंगे हम जरा हो गया ना कि बहुत सिलेक्टिव बोलेंगे या जब कहा जाएगा कि आप बात करो. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जब चेंज हुआ आप मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गई तो लाइक ओके दिस इज़ नाइस क्योंकि समवन वांट्स टू हियर व्हाट गोज ऑन इनसाइड माय हेड व्हेन आई रीड समथिंग. सो यू आर राइट, हमने बहुत चेंज हो गया अब तो बहुत ज़्यादा.
पोस्ट कोविड तो ज़्यादा हुआ.
यस
पोस्ट कोविड ये हुआ है कि कभी कभी मेरी शाहजेब के साथ गुफ्तगू हो रही होती है माय हस्बैंड, वो कहता है कि यार तुम 2 बजे क्यों रिप्लाई करती हो बच्चों को. मैं कहती हूँ ये कोविड के टाइम पे ये हुआ था कि व्हेन डिजिटल मीडिया वाज द ओनली प्लेटफॉर्म या फिर डिजिटल एप्स वाज द ओनली प्लेटफॉर्म तो उन्हें आदत हो गई है मैसेज करने की. व्हाट्सएप पे कोई ईमेल नहीं करता, मेरा कोई स्टूडेंट मुझे ईमेल नहीं करता, सब व्हाट्सएप करेंगे, वॉइस नोट्स भेजे होते हैं कैजुअली. अब आप उस पूरी जनरेशन को बिठा के नहीं समझा सकते कि ये ना करो ना करो ना करो. अब आपको उस तरह से उनसे बात करनी पड़ेगी.
अच्छा पता है मुझे शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता था ये वॉइस नोट्स की आपने बात की व्हाट्सएप पे क्योंकि हम जब मैं कॉलेज तक तो एटलीस्ट थी ना तो तब ये सिस्टम नहीं था.
हाँ,
और मैं बात कर रही हूँ 2020 तक की. अब आप सोच ले इतनी पुरानी आप लगेगा 5 साल हो गए होने वाले हैं. लेकिन तब ये होता था कि अगर मैम को ये भी लिख दो, मैम ना लिखे ना अगर व्हाट्सएप पर अगर बात हो तो वो पॉइंट आउट करती थी कि मैम क्यों नहीं लिखा, ओके सिर्फ क्यों लिखा
है. यस
That's not the way to talk to your teacher.
Yes.
ये thumbs up भेज देना और अब मैं कर लेती हूँ या कुछ होता है ना कि कोई कोर्स ले लिया कुछ ऐसे भेज दिया.
My students they send me memes मतलब और WhatsApp पे.
लेकिन ये हमने नहीं देखा हुआ ना इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा हमें टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल अब हो गया है राइट.
हाँ इतना बुरा चेंज नहीं है.
नहीं I'm not mad about it.
हाँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. देयर बिगर प्रॉब्लम्स
यस करेक्ट
जिन पे फोकस करने की सख्त जरूरत है बजाय कि आप हम बैठ के ऐसी टॉक्सिक बातें कह रहे हो कि आजकल के बच्चों को तो ये नहीं आता वो नहीं आता. हमें भी बहुत कुछ नहीं आता. हमें अनलर्न जो तुमने मुझे शुरू में कहा था ना कि यू अनलर्न अ लॉट, हमें वो करने की बहुत सख्त जरूरत है.
आई थिंक कांस्टेंट ये प्रैक्टिस होनी चाहिए हमारी. It should never stop because time is not change ho rahe hain. Just you have to you know wo jaise mold nahi kar lete.
Do you think someday we'll agree ke AI generated text is fine?
आई थिंक वी विल हैव टू बिकॉज जिस तरह की हम दुनिया में हैं
10 साल बाद
अब बाहर तो रोबोट्स आर टेकिंग यू प्लेसेस कैब्स के जो सर्विस है एंड अब उसके बगैर लोग लिख नहीं पाते इतनी टाइट डेडलाइंस होती हैं यू हैव टू सेंड इन प्रपोजल्स इतना कुछ होता है ऐसे ऐसे काम करना है आपकी क्योंकि वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आप लोगों ने लोगों को कम रखना यू नो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड किस तरह इवॉल्व हो रहा है सो लाइक इतना कम टाइम में एक ह्यूमन के लिए ये टास्क करना इज़ वेरी डिफिकल्ट ऑन देयर ओन अब बैठ के टाइप करना वो वाला दौर बहुत आई थिंक वी माइट हैव टू स्लोली वार्म अप टू इट इज़ जस्ट मेरे लिए थोड़ा सा मेरी मोरालिटी जाग जाती है बिकॉज ऑफ माई डिग्री एंड एवरी थिंग क्योंकि जो राइटर्स और ये बहुत मुश्किल होता है बट इट्स नॉट लाइक वी बिग हेटर्स कि ये होना ही नहीं चाहिए कैसे हो सकता है ये बिकॉज अगर आपको अपनी आर्ट फॉर्म पर भरोसा है ना इट विल नेवर डाई सदियों से अगर लोग लिख रहे हैं दे विल नॉट स्टॉप राइटिंग किताबें छपती रहेंगी प्लेज लिखे जाएंगे थिएटर होता रहेगा पेंटिंग्स
बनती
रहेंगी ये चीज़ें नहीं रुकने वाली तो अपनी आर्ट फॉर्म पे ट्रस्ट है तो एआई जनरेटेड वर्ल्ड हो या जैसा भी हो इट्स फाइन
पता है मुझे डर लगता है कि मेरा दिमाग रोबोट ना हो जाए आई वॉन्ट टू फॉल डाउन आई वॉन्ट टू मेक बैड आर्ट जो मैंने पहले लिखा था आई वॉन्ट टू मेक मिस्टेक्स मैं अंग्रेजी उर्दू पंजाबी तीनों में से कोई ढंग का नहीं बोल सकती है ना एंड दिस इज़ हु आई एम मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी ज़िंदगी भी कभी पूरी प्रॉपर अंग्रेजी से ही बोलूँगी कभी आई हैव अ डिग्री इन उर्दू लिटरेचर ऑल्सो तो लेकिन उर्दू भी मेरी वही घिसी पिटी सी है मेरे माई फादर हैड एम फिल इन पंजाबी लिटरेचर तो मेरी मुझे पता है चीज़ें लेकिन कोई भी मुझे पूरा पूरा कमांड नहीं है किसी भी लैंग्वेज पे और मुझे अब ये चीज़ें अपने बारे में बड़ी अच्छी लगती हैं वो नहीं होता कि आपने ग्रामरली से और बाकी चीज़ों से आपको प्रॉपर वेल कंस्ट्रक्टेड टेक्स्ट चाहिए बट दैट इज़ नॉट मी ना आई एम माई मिस्टेक्स
I think artists के लिए it's a very different challenge.
कि दुनिया इतनी perfect होती जा रही है.
Yes.
I'm not that perfect.
Yeah.
Sometimes I'm bitterly honest.
But ये तो चीज़ है ना कि लोगों को समझ नहीं आती कि जो वो Instagram पे देख रहे हैं, जो वो scroll कर रहे हैं, वो perfect लग रहा है, but वो है नहीं.
ये भी लगता है perfect, मुझे तो नहीं लगता perfect.
It जो आप देखेंगे कि लोग जो खुश होते हैं. You only post about the happy things, the happy moment. Do you post yourself के you know आपके साथ ये हो गया या वो it's very rare that people are like you don't post your failures. I didn't get this deal or like मेरा आज ये कुछ भी it could be I didn't get the job. You don't see people posting that. People on LinkedIn will be like I got the job. They're not going to post I did not get the job. बहुत कम ऐसे होंगे जो later stage in life करेंगे वो we had this many failures but now I'm here. तब post करेंगे failure.
वो क्योंकि उसको आप overcome करके आ जाते हो ना.
Yes, exactly. आप एक पूरा process दिखा रहे हो. So I think वो एक जब तक इंसान है ना ये चीज़ें रहेंगी. ये imperfections हो गई आप उसको जो लव्स देना चाहो ये एक इंसान की messiness हो गई उसकी complications हो गई वो रहेंगी जब तक इंसान है और ये चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी वी हैव गॉन थ्रू सो मैनी थिंग्स अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट बिफोर इट्स क्रिएशन आफ्टर इट वॉज क्रिएटेड मैनी ईयर्स आफ्टर दैट सो मैनी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं नेबरिंग कंट्रीज से हो या वो हमारे मुल्क में यू नो बट एक चीज़ जो एक एसेंस रही है ऑफ बींग वट अ पाकिस्तानी इज इट आई डोंट थिंक इट कैन बी लॉस्ट What do you think?
नहीं, I agree with that.
तो ये एक चीज़ है आपने मैंशन किया कि यू नो जैसे हमने पेंटिंग की बात की टीचिंग की बात की यू ऑल्सो इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड ऑफ सिंगिंग मैंने देखा था यू वर अ पार्ट ऑफ द कॉलोनी क्वायर जो कि एक प्रोजेक्ट है कॉलोनी लाहौर का जहाँ पे आपने फेब्रवरी में परफॉर्म भी किया था एट द लाहौर फोर्ट सो ये कैसा एक्सपीरियंस था वट वॉज द शो अबाउट कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम परफॉर्म मतलब परफॉर्मिंग कितना मुख्तलिफ है From creating art, बहुत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं
अच्छा मेरे लिए इतना मुख्तलिफ इसलिए नहीं है बिकॉज वेन यू क्रिएट आर्ट एंड देन यू डिस्प्ले इट इन सम गैलरी जब आप गैलरी में जाते हो देन यू परफॉर्म तो जब आर्टिस्ट आपको गैलरी ओपनिंग्स पे नज़र आता है ना वो बेचारा बड़े अरसे बाद नहाया होता है बड़े अरसे बाद साफ सुथरा खड़ा होता है तो तब वो बड़ी हद तक परफॉर्म ही कर रहा होता है
क्योंकि
मेरा तो बस नहीं चल रहा होता ऑन सो मेनी गैलरी ओपनिंग्स ऑफ माइंड में अपने बैग में मेरे ब्रश और कलर्स पड़े होते हैं और शुरू शुरू में मैं जाते ही सबसे पहले किसी पेंटिंग को रीटच कर रही होती हूँ जब वैसे ही लोग आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद मैं रुक जाती हूँ उसके बाद आई ट्राई नॉट टू क्रिटिसाइज माई आर्ट विच इज़ समथिंग आई डू अलॉट सो परफॉर्मेंस तो मेरी तब भी चल रही होती है सिंगिंग इज समथिंग विच वॉज इट वॉज डिलीवर्ड टू मी बाय माई मदर शी इज एन एक्सेप्शनल सिंगर हम चार बहनें हैं हम चारों बहुत अच्छा गाती हैं और अम्मी को मैंने बचपन से रोते हुए भी गाते सुना है हंसते हुए भी गाते सुने और माई ग्रैंड मदर वो जब मशीन अपनी चलाती थी शी यूज़ टू टीच मी ऑल सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स मुझे इतने पुराने पुराने पंजाबी गाने आते हैं कि मुझे लगता है वो जनरेशन नहीं रही और वो गाने सुनने वाले नहीं रहे और मैं जब गाती हूँ तो लोग हैरान हो जाते हैं कि तुम्हें ये तो यूट्यूब पे भी नहीं मिलते ये वो हैं जो बस लोग सुन सुन के आगे फैलाते रहते थे मुझे इस तरह के पुराने पंजाबी गाने
I think ये वो वाले होंगे जो औरतें अपनी इंटरमेट सेटिंग्स में गाती थी या शादी हो गई या वैसे हो
हाँ हाँ औरतें काम करते हुए गाती
काम करते
चरखा काटते हुए गाती थी वो गंदुम बनाते हुए गाती थी ये वो वाले गाने हैं जो मुझे मेरी दादी ने सिखाए हुए
एंटरटेनमेंट यही था ना
एंटरटेनमेंट यही था आपस में एक अगेन आई थिंक मोर देन एंटरटेनमेंट आपस में अपने इमोशंस को वो करने का Like when you in our songs we talk about womanhood we talk about the domestic settings
yes
Punjabi purane geeton ke andar aapko ghar ki baatein hi sunai de rahi hoti hain etho aayi etho gayi inch kita inch khaya ye sari sari baatein to singing has always been a part of my life whenever I paint I always sing mujhe koi agar studio mein paint karte dekhta hai na to jab main bahut magan hoti hu na paint karne mein तो मैं बहुत ज़्यादा गा रही होती हूँ और बहुत ऊंचा गा रही होती हूँ और इन माय मास्टर्स व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन पार्टिशन देयर वाज अनदर साइड प्रोग्राम आल्सो उनको ये लोग कहते हैं कि इट्स द क्लासिकल मुझे सब्जेक्ट का नाम भूल गया खैर उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू गो आउट और आप किसी ऐसे उस्ताद के पास जाओ जिसकी पिछली 5-6 जनरेशन इस फील्ड के अंदर है चाहे आप किसी पॉटरी मेकर के पास चले जाओ चाहे आप किसी अजरक बनाने वाले के पास चले जाओ और मैं चली गई थी अपने किसी सिंगिंग में क्लासिकल पंजाबी सिंगिंग में उस्ताद के पास उनके पास मैंने 2-3 महीने बैठ के पंजाबी क्लासिकल सिंगिंग की ट्रेनिंग ली थी तो वो वहाँ से मेरे थोड़े से वोकल्स प्रॉपर तरीके से ट्रेन होना शुरू हुए और फिर उसके बाद कॉलोनी क्वायर तो वॉज जस्ट इट वॉज अ लॉट ऑफ फन पर वो बस मेरा दिल कर रहा था स्टेज पर खड़े होके साथ काफ़ी ज़्यादा लोगों के सामने गाने का वो आपके कॉन्फिडेंस को एक और झटका देता है बट सिंगिंग इज मोर देन दैट फॉर मी इज सेलिब्रेशन ऑल द टाइम और जब मैं गाती हूँ मैं अपने हाथ बहुत हिलाती हूँ मुझे लगता है मैं पेंट कर रही होती हूँ सो मैंने पहले भी एक किसी शख्स के साथ प्रोजेक्ट किया था जिसके अंदर ही वॉज फोकसिंग ऑन पेंटर्स हु सिंग बिकॉज़ व्हेन यू पेंट इट इज वेरी रेयर But it is there.
It is rare, but it is there. Yes.
There are a lot of painters, जो कि paint करते हुए गाते हैं. मुझे नहीं पता था. उन्होंने एक बकायदा एक बड़ी अच्छी compilation बनाई थी of a lot of especially female artists, जो कि गाती हैं paint करते हुए. You know, our mothers they sing while cooking.
Yes.
है ना?
मुझे तो लगे ही normal है.
हाँ.
My mother sings.
हाँ.
वो वैसे भी गाती हैं जब खाना बन भी गया हो अब सर्व हम सब मिलके जब कर रहे हो
तो, हाँ, तो ये कुछ और है ये ग्लू है जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को इंटैक्ट रखती है
और वो अपने टाइम के
हाँ, अपने
टाइम के हैं
हाँ.
वो गा रही होती हैं जो कि मैं होती हूँ कि हाँ शायद सुना था क्योंकि आई डू लिसन टू ओल्ड बॉलीवुड म्यूजिक तो मुझे आ जाती है बट वो अपने टाइम के गाती ये नहीं कि नए वाले वो आते भी नहीं है उनको
प्लेस सिंगिंग अपार्ट फ्रॉम माई पेंटिंग प्रैक्टिस मुझे लगता है दोनों मिल के ही मेरा एक वो बना रही होती हैं मैं गैलरी में अगर खाली बैठी होती हूँ मैं अगर किसी का इंतज़ार कर रही होती हूँ अकेले तो मैं हमेशा गुनगुना रही होती हूँ इवन मैं आर्ग्यूमेंट के बीच में गाती हूँ दैट्स द वेयर्डेस्ट थिंग आई डू मैं अगर तुमसे लड़ रही हूँ और आर्ग्यूमेंट कर रही हूँ और मैं खामोश हो रही हूँ तो मैं करके गाना शुरू कर दूंगी आई नो इट इज वियर्ड बट दिस
नहीं आई थिंक इट्स जस्ट हाउ यू रेगुलेट योर इमोशंस आप एंगर हो या सैडनेस हो या फ्रस्ट्रेशन हो फियर हो हर एक का तरीका होता है कुछ लोग जोक करते हैं एक्सेसिवली दे गेट लाइक सुपर they get like very funny and dark jokes ho ya jaise bhi satire use karte hain.
Think
it's very normal.
Yeah.
It's just a coping mechanism,
hai
na? You also conduct painting workshops in mukhtalif studios mein, and it sounds like quite a learning experience. So kya ye workshops offer karti hain, and how can those who are interested avail from your teaching methods? Ab hum teaching methods bilkul ab change ho gaya, ab to जब मैं सवाल लिख रही थी तब बिल्कुल अलग था.
हमारा फोकस जब हमने ये वर्कशॉप शुरू की थी, हमारा फोकस तब था कि जो लोग आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से उस तरह नहीं आते, जो लोग इसको बहुत बड़ा एक हवा समझते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं पेंट करने के लिए आपको पेंटिंग आनी चाहिए. तो तुम कह रही थी ना कि अगर मैंने कैनवस के ऊपर मैं तुम्हें कलर्स पकड़ा दूँ और तुम मैं साथ तुम्हारे खड़े हूँ, तो मी बींग अ पेंटर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि आई एम वर्किंग इन फ्रंट ऑफ अ पेंटर, जैसे मैं किसी सिंगर के सामने नहीं गा सकती. तो हमने अपने वर्कशॉप का ये थोड़ा सा रखा हुआ था क्राइटेरिया कि विल इन्वाइट ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल, आप चाहे 10 साल के हो चाहे 100 साल के हो, आप आओ और यू एक्सप्रेस योर सेल्फ. और अगर आप वो नहीं करना चाहते और अगर आप किसी किस्म की टेक्निक सीखना चाहते हो, हम आपको वो भी सिखा देंगे. अगर आप स्टिल लाइफ पेंट करना चाहते हो, आपको जिस किस्म का आर्ट बनाना है आप हमारे पास आओ, नो प्रेशर. इवन इफ यू वॉन्ट टू लर्न पोर्ट्रेट पेंटिंग, मेरी एक्सपर्टीज भी है उसमें. तो मैं आई मेक श्योर कि मैं अपनी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन, अपना पूरा का पूरा जितना भी मुझे टेक्निकलिटीज पता है मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको बाद में आपका मसला है आप उसको कैसे पेंट करते हो कैसे नहीं पेंट करते. और आई रिमेंबर हैविंग दिस वन वर्कशॉप, उसके अंदर मुझे सबसे मज़े की वर्कशॉप लगी थी कि अचानक से 4 to 5 मदर्स दे असाइन फॉर दिस वर्कशॉप. और वो थी तकरीबन ऑल ऑफ देम वर +50 +40. इट वॉज़ दी मोस्ट फन वर्कशॉप वी एवर हैड, क्योंकि वो सब जब बैठी हमारे पास, वन ऑफ देम वॉज ऑल्सो 80-year-old लेडी, और वो हमसे बस ये बात कर रही थी कि हमारे बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, हमारे बच्चे बाहर पढ़ने चले गए हैं, हमारा इतना दिल करता था पेंट करने का, अब हम आ गए हैं आपके पास. हमारा दिल करता है कि बचपन में हमने कभी कलर पकड़ा था, बचपन में स्कूल में आर्ट क्लास में कलर पकड़े थे, अब हमारे पास अपने लिए टाइम है. एंड दैट मेड मी, इट अकर्ड टू मी दैट डे कि औरतों को अपने लिए वक्त निकालने में कितना सोचना पड़ता है. द अमाउंट ऑफ गिल्ट दे फेस, जब हमने उनसे कहा कि आप 2 दिन निकाल लें इस वर्कशॉप के लिए आए, आप औरतों में बैठे हमारे साथ चाय पिए, पिज्ज़ा खाएं, आके हमारे साथ पेंट करें, ये 2 दिन आपके हैं, इसमें आपने अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने हैं. यू स्पिल दैट रेड कलर, आप फेंके वो लाल पीला रंग जो भी आपका दिल कर रहा है. उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार मेरी अम्मी को इस चीज़ के लिए मनाना कि अम्मा 2 दिन घर की फिक्र नहीं करें, खाने वगैरह की फिक्र नहीं करें, आके पेंट करें, इज़ दी हार्डेस्ट थिंग टू डू. वो नहीं मानी, वो अलग बात है. लेकिन जो औरतें आ भी रही थी ना, मैं उनको देख रही थी कि यार ये बहुत कम दिखता है मुझे. कहाँ है तुमने लास्ट टाइम देखी है 10-15 औरतें बैठी हुई पेंट कर रही हैं, और वो भी हाउस मेकर्स, होम मेकर जिन्हें हम लोग कहते हैं.
जी जी.
वो नहीं जो अपने लिए वक्त निकालना जानती है. हम होम मेकर्स की बात करें जिन्हें पर्सनल स्पेस का पता ही नहीं है.
नहीं, उनका दिन नहीं होता,
उनका कुछ भी नहीं,
नहीं उनका नहीं होता.
तो ये वर्कशॉप्स मेरे लिए इसीलिए मेरे दिल के बहुत करीब है.
और पता है सैड बात ये है कि अनफॉर्चुनेट बात ये कि मतलब उनको बहुत टाइम बाद रियलाइज होता है, जैसे आपने बताया कि अब वो कहती कि जब बच्चे फारिग हो जाते
हैं,
आप वेट करते हो कि बच्चे फारिग होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले लेंगे, उनको पता है उन्होंने क्या करना है, उनको खाने पीने का पता है, काम का पता है, सेविंग्स का पता है, ये चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं. अब फिर माँ कहती है हाँ अब मैं फारिग हूँ. उससे पहले कभी वो फारिग नहीं होती. लाइक माई मदर इज़ लाइक, अब उन्होंने जाके उनको बहुत होता है कि मैं ना ओल्ड एज होम जाऊँ एंड आई टेक खाने पीने का सामान लेके जाऊँ, मैं वहाँ बैठ जाऊँ, उनसे बातें करूँ, मेरे लिए फुलफिलिंग है. पहले क्यों नहीं, आपका यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस थिंग. आपको टाइम कब कि नहीं, जब बच्चे फारिग हो गए, अब वो अपने अपने काम पे जाते हैं, मैं पूरा दिन आई हैव द डे, सुबह से लेकर शाम तक आई हैव द डे टू माई सेल्फ, तब वो ये यूज़ कर रहे हैं.
बिकॉज सोसाइटी इज ऑल्सो नॉट फॉर गिविंग फॉर मदर्स ना.
यस.
अगेन आई गो बैक टू माई फैमिली फंक्शन ऑल द टाइम कि व्हेन आई लुक एट वुमेन, मैं देख रही होती हूँ कि वो बच्चे को खिला रही हैं, फिर खुद खाना खा रही हैं, और अगर कहीं गलती से उनका बच्चा रोना शुरू कर दे तो All, well, including women also, men also, they're like, उसको पकड़ो, उसको देखो, आपने देखा भी नहीं कि उस औरत ने ढंग से खाना नहीं खाया, उसका हस्बैंड टांग पे टांग रख के बैठा हुआ है पीछे, वो क्या अपने लिए वक्त निकालेगी? वो उसी वक्त शर्मिंदा हो जाती है, वो उठ के चली जाती है, वो बच्चे को उठा के साइड पे हो जाती है कॉर्नर, अपना खाना छोड़ देती है। मैं बहुत ध्यान देती हूँ औरतों के खाने की प्लेट्स पे, वो अपने बच्चे का बचा हुआ खा रही होती हैं, वो अक्सर छूटा खाना उनका पड़ा रह जाता है वहाँ पे, नो वन केयर्स, कोई ध्यान नहीं देता। तो मुझे जब मैं इस तरह की वर्कशॉप कराती हूँ ना, और मुझे जब ख्वातीन आती हैं, तो मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है कि यार मुझे पता है कि ये अपने उस गिल्ट को सरपास करके आ रही हैं, ये जीत के आ रही हैं एक छोटी सी बैटल जो कि एक और जेंडर को नहीं पता कि ये क्या बैटल होती है।
यू आर सो राइट, मैं अपनी अम्मी को ऑब्जर्व करती हूँ ऐसे, अगर मैं उनके लिए रिमाइंड मी ऑफ टेलर स्विफ्ट्स ट्रैक वी कांट हैव नाइस थिंग्स समथिंग लाइक दैट, दैट सूट्स अ मदर परफेक्टली, बिकॉज अगर मैं उनको कोई चीज़ उनके लिए सिर्फ ले आऊँगी, शिल भी लाइक कि नहीं थोड़ी सी तुम भी ले लो, हाँ। थोड़ी सी मेरे भाई को, भाई मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आप प्लीज़ खा लें उसको, नहीं मेरा पेट भर गया है, दे विल ऑलवेज हैव अ वेरी गुड एक्सक्यूज़ कि नहीं वो मेरा गला ख़राब होता है इसलिए मैं ये नहीं, आई एम लाइक मुझे समझ आ रही है आप क्या कर रही है। तो मदर्स फील लाइक दे कांट हैव नाइस थिंग्स ऑल टू देमसेल्व्स, दे जस्ट के नॉट। और आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया कि वो झूठा खा लेना, मैं अपनी फ्रेंड्स को अब देखती हूँ ना विद देयर किड्स, वो भी यही कर रही होती है, I'm like
maybe out of love also, अच्छा ये भी
हमें इतना ज़्यादा उसको, it's very selective, मैंने बिल्कुल हमने उसको कर दिया ऐसे,
ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि मैं भी कल को अगर मेरी भी कोई औलाद हो तो हो सकता है मैं भी उसका झूठा खा लूँ, लेकिन फिलहाल तो मेरा दिमाग बहुत अवेयर है इस चीज़ पे कि मुझे अपने आप को मारना नहीं है, मुझे अपने आप को दफना के अपना बच्चा बड़ा नहीं करना, क्योंकि फिर वो बच्चा सारी जिंदगी ना आपकी एक तरीके से आपका डेड पार्ट अपने अंदर लेके घूमता रहता
है। And also your child will grow up to know these things and they will carry this guilt forever.
I have it.
That my parents did this for me. I didn't, मेरे पास, मैं तो इतना capable भी नहीं था या नहीं थी to speak up.
Yeah.
मुझे तो पता ही नहीं था. So that's also very damaging for
we
the child.
We have our mother's guilt.
होता है। So I think they should also. So what does the future look like for Sana? Like, do you have any special plans in place with regards to teaching, workshops, or like, do you have any personal goals that you wish to achieve?
I want to be more vulnerable. I want to be more honest about my work. I want to speak the truth. 3 साल पहले अगर कोई मेरी पेंटिंग्स के सामने खड़ा होकर मुझसे बात करता था और कहता था कि आप आपकी ये फीमेल फिगर्स कहाँ से आ रही हैं, आपके काम में छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ से आ रही हैं, सादा अल्फाज में, मैं बड़े बड़े लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करती, तो मैं कहती थी आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रामा, बट दीज आर वेरी ह्यूज टर्म्स टू यूज़। किसका लॉस, कौन सा ट्रामा, कहाँ से जनरेट हो रहा है? नाउ आई एम बीइंग वेरी वोकल अबाउट इट के हरासमेंट, बॉडीली इशूज, मिसोजिनी, पेट्रियार्की, और मैं बकायदा लोगों को, मुझे लगता है कभी कभी लोग कांप जाते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो सच उनको बहुत बड़ा लगता है, इसलिए कि वो सच सुनने की आदत नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी के कोई वाक़यात बताओ और महफिल में बताना शुरू कर दो, तो लोग वो वाकयात उन्हें पता होते रहते हैं, हमें सुनने की आदत नहीं है वो चीज़। तो मेरे अंदर ना अब एक एंगर बबल होता होता, मुझे वो चीख के नहीं बताना, बट मेरा दिल करता है कि मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरी आंख, मेरा पेंट, मेरा स्टूडियो, सब कुछ वो चीज़ बता रही हो कि आई कैन नॉट कंटेन इट एनी मोर, अब मैं खामोश नहीं रह सकती, अब आप मुझे अगर किसी वक्त में किसी ने मुझे खामोश करके बिठा दिया कि बेटा नहीं बोलना, बेइज्जती हो जाएगी, तुम शर्म में रहोगी, आई लिव्ड विद गिल्ट माय एंटायर लाइफ, मैं आई यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ मैन, आई यूज्ड टू ड्रेस अप लाइक अ गाय, मैं मजाक उड़ाती थी ख्वातीन का, मैं कहती थी ओ शलवार कमीज तो जनाना सी चीज़ है, और आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कहती थी मेरी तो दोस्ती लड़कों से होती है, मैं तो लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करती, मैं तो बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। कितनी घटिया सोच थी, और अब मुझे समझ आ रही है कि वो सोच कहाँ से जा रही थी, कि मैं भी सोचना नहीं चाह रही थी कि मुझे टू साइलेंस दैट वॉइस और टू फिल दैट वॉइड, मैंने कहा कि मैं तो लड़की ही नहीं हूँ, मैं तो वो जो पावरफुल रेस मुझे नज़र आ रही है ना मर्दों की, मैं तो अब उनमें चली जाऊँगी, शायद वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि लड़की को तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब अगर गैलरी में आके या मेरे स्टूडियो में आके या वैसे भी मुझसे कोई रीच आउट करता है, मुझे कहता है कि आपके काम के अंदर हमें ना And I've noticed people are very selective with the words. So they're very scared to question me. Ke, wo, kya, aap, aap, kya, aapke saath kuch hua tha? बात ये भी नहीं है कि कुछ हुआ था, बात ये है कि आप पहले मुझे ये बताएं कि आप सुनने की हिम्मत रखते हैं और सुनने के बाद क्या आप उसको हजम करने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपने मुझे इस तरह की बातें कहकर जानी है कि और तुम औरतें रोती रहती हो तो प्लीज़ फिर अभी उठ के यहाँ से चले जाएं। और आई ऑल्सो बिकम वेरी सिलेक्टिव कि मैंने किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में एडिटिंग का प्रोसेस भी बहुत तेज़ कर दिया है एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, कि अगर कोई कोई शख्स बैठ के मुझे ये फील करा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल हूँ, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, तो मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती। और ये सारे के सारे मेरे आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। और वन थिंग जो कि अब मुझे सबसे ज़्यादा, यार एक चीज़ जो मुझे काश पहले किसी ने बताई होती कि मुझे औरतों का हाथ पकड़ना है और मुझे दोस्ती करनी है उन औरतों के साथ जिनसे मुझे कॉन्स्टेंटली नफ़रत करना सिखाई गई है बचपन से लेके आज तक। मेरी फीमेल कज़न्स हो जाएं, इफ़ आई एम दी बहू इन माई फैमिली दी अदर बहूज ऑल्सो, मुझे उनसे बेहतर कपड़े पहनने हैं, मुझे उनसे पता नहीं क्या बकवास गंदगियाँ, या फिर फीमेल आर्टिस्ट हैं जितने भी आर्ट वर्ल्ड में, पहले ही बेचारी थोड़ी सी हैं, बेचारी भी नहीं कहना चाहिए, पहले ही थोड़ी सी है, मुझे और उनके साथ मिलके कलेबरेशन करनी है, मुझे और उनके साथ काम करना है, मुझे उन्हें डिफेंड करना है, मुझे अब खामोश नहीं रहना।
We want to be a girl's girl.
Yes. Sisterhood वाली जो चीज़ है ना, सहेली, सखी सहेली वाली टर्म्स मुझे वापस लेकर आनी है, कोई कमजोर टर्म्स नहीं है। अभी कल आई वॉज टॉकिंग टू एन एंकर और मुझसे उसे यही बात करी थी कि अभी तक औरत को ठीक से दिखाया नहीं गया। We are more than pretty, pretty bones, pretty flesh वाली चीज़। हम तो वो force of nature। जिस तरह से एक औरत आपको समझ लेगी दूसरी औरत को फ़ौरन से, पहले हमने उसको ना अलाउ नहीं किया वो के समझने का, हमने उसकी छोटी छोटी territories बना दी कि तुम तो किचन पे राज करोगी और तुम तो घर संभालोगी, हमने दूसरी औरत के साथ उसको कनेक्ट नहीं होने दिया। I grew up with sisters। है ना, तो मुझे पता है कि जब हम चारों खड़ी हो जाती हैं तो कोई हमें कुछ नहीं कह पाता, और साथ में अगर अम्मी खड़ी हो जाए तो फिर तो वो एक किला बन जाता है बहुत बड़ा। तो अब ये वो चीज़ है जो मैं अपने प्रैक्टिस में, आर्ट वर्ल्ड में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा
आई थिंक ये मेरे साथ भी हुआ था, बिकॉज आई यूज़ टू टेल माई मदर की शुक्र है मेरी कोई बहन नहीं है। ये बहुत बातें होती हैं जो कि डीपली रूटेड होती है, वाई वी से दोज थिंग्स उस वक्त समझ नहीं आती। एंड लाइक यू नो माई ग्रोइंग अप, जो मेरे रिलेशन, आई ग्रो वेरी डिस्टेंट विद माई मदर, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जाके थोड़ा अब चेंज हो रहा है, बिकॉज आई एम स्लोली रियलाइजिंग वाई शी से सर्टन थिंग्स, एंड यू नो शी इज़ ऑल्सो स्लोली वार्मिंग अप टू माई वर्ल्ड, बिकॉज वो डिजिटल स्पेस को अब अंडरस्टैंड करती हैं, द सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट शी शेयर्स विद मी, एंड सो शी इज़ ट्राइंग टू ऑल्सो यू नो टेक दो स्टेप्स विच मेक्स मी वॉन्ट टू टेक दो स्टेप्स, बिकॉज आई सी हर मेकिंग एन एफर्ट, सो वाई कॉन्ट आई। सो वो भी एक अनलर्निंग और रीलर्निंग वाला था, आई कम्प्लीटली गेट दैट पार्ट। So that was a very interesting conversation that we had. We touched upon a lot of subjects.
Yeah, we did.
काफी diverse थे, काफी vast थे.
I think एक चीज जो मेरे line मेरे दिमाग में कुछ इस तरह की आ रही है ना कि I was told by society that I have to be a particular sort of woman. और अब मेरा इरादा ये है कि मुझे वो औरत बनना है जो मैं हूँ.
जो मैं हूँ.
और उसकी वो वाली definition मुझे कहीं मिलती नहीं है. वो माँ बेटी, बहू बहन, इवन द फीमेल आर्टिस्ट, लाहौर बेस्ड फीमेल आर्टिस्ट, है ना, इससे भी this, ज्यादा मैं कुछ हूँ।
yes, you are more than that, हाँ, of
course. हम अंदर कुछ और हैं, कोई और फोर्स है जिसको अभी हमने नाम नहीं दिया कोई।
I know, I have a very hard time when people ask me, what do you do? I'm like, किस तरह, हाँ, किस तरह? I do a lot of things. I'm more than just doing, जो मैं बहुत कुछ करती हूँ, क्योंकि देखिए ना, बहुत चेंज हो गया है वट जो हम काम पे करते हैं, इट्स वेरी, सिर्फ वो चीज़ नहीं है, दिस सो मच मोर दैट वी डू। हम डिजिटल स्पेस में बहुत कुछ कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों के साथ, इट्स वेरी हार्ड टू टेल समवन कि आप क्या करते हैं। सो और मैं अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहती होती, तो मुझे समझ नहीं आती मैं लोगों को किस तरह जवाब दूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पीपल टू थिंक द नेक्स्ट टाइम दे लुक एट दिस सी मी एंड देयर लाइक ओ अच्छा आप तो वो है ना आप वो करते हैं.
अच्छा पता है मैं पूछ लेती हूँ जैसे अगर कोई मुझसे कहते हैं ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे तो मैं कहती हूँ कि लॉजिकल या फिर ऑनेस्ट इंट्रोडक्शन. सो द लॉजिकल वाला मैं ये कहती हूँ कि दिस इज द लॉजिकल पार्ट कि हाँ मैं यहाँ से पढ़ी हूँ ये करती हूँ वो करती हूँ. द ऑनेस्ट वाला इज कि यू नो आई एम समवन हु लाइक्स टू हैव देयर मॉर्निंग टी इन देयर स्टूडियो देन रीड समथिंग एंड देन पेंट समथिंग एंड देन गोइंग आउट फॉर अ वॉक कमिंग बैक लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक. ये इससे ये एक ब्रिज बनता है दूसरे बंदे का. ये है ऑनेस्ट.
आई थिंक मैंने एक दफ़ा किसी को इंट्रोड्यूस भी आई थिंक माविश आई थी माविश अहमद हमारे पॉडकास्ट पे एंड मैंने उनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया था बिकॉज शी लव्स टू हैव हर टी इवन तो वो बाहर होती है लेकिन शी इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि मैंने चाय लिप्टन आई थिंक वही थी शी इज़ वेरी पर्टिकुलर एंड दैट्स हाउ आई इंट्रोड्यूस हर बिकॉज मुझे अच्छा लगा एंड आई न्यू हर ऑडियंस वुड एसोसिएट मोर विद दैट के ओके यस वी नो माविश इसी तरह यही है वो माविश तो आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट. Well, thank you so much for being here and for this conversation. I'm pretty sure kafi log resonate karenge with what has been shared and jo hamari baatein thi. I'm pretty sure ki jo dekh rahe hain artists ho chahe koi bhi insaan ho they can pretty much relate to it. So thank you.
Thank you so much.
And thank you to everyone jinhone join kiya who watched this and if you feel like there was something jo aapne resonate kar sakte hain any story you feel like you're comfortable sharing please do drop it in the comments I would be more than happy to interact and I will definitely catch you in another episode very soon till then take care of yourself khuda hafiz